यहाँ पर फिर से प्रभु यीशु के नाम में और महान और सामर्थी कामों को सुनना जिसे आपने इससे पहले किए हैं, और हम अब यहाँ पर प्रतीक्षा के साथ खड़े हुए हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाएं और हमें अभिषेक करें ताकि हम विश्वास करें कि जो कुछ आज रात के लिए मांगा गया है वह प्रदान किया जाएगा। आप उनमें से हर एक को जानते हैं, उन्होंने जो सारी विनतियों को किया है, और हम उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो मृत्यु के बहुत ही करीब हैं। उनके प्राणों के लिए शांति को लाएं। यदि वे वहाँ पर नहीं है तो उनके शरीर को चंगाई दीजिए, इसे प्रदान करें प्रभु। हमारे एक साथ एकत्र होने को आशीष करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज बुधवार रात की सभा को जैसे हम एकत्र हुए हैं, यह जानते हुए यहाँ कई भी दो या उससे अधिक एक साथ इकट्ठा होते हैं, आप हमारे साथ होंगे। और हम आपसे मांगते हैं प्रभु, आज रात के लिए हमें वचन देना, हमसे बातें करें प्रभु, हमारे हृदय को असाधारण रूप से उत्तेजित करें कि हम जान जाएं कि उस महान घड़ी के लिए कैसे तैयार होना है जो हमारे सामने रखी हुई है। जैसे हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु के आगमन के नजदीक हैं। हम आपको उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, अब वे उनके प्रियजनों के लिए विश्वास को पाना आरंभ कर रहे हैं और जानते हैं कि विश्वास का क्या अर्थ होता है, और ये जानकर आपको धन्यवाद भी दे रहे हैं। जो अब आगे होने वाली सभाएं हैं, वे यह विश्वास कर रहे हैं कि आप कुछ तो करने जा रहे हैं। प्रभु, हम पहले के दिनों के जैसे प्रतीक्षा के साथ रुके हुए हैं, विश्वास करते हुए कि समय नजदीक है जब आप बस स्वर्ग के दरवाजे को खोलकर और प्रतिज्ञाओं को ढेलेंगे जिसे परमेश्वर ने इस अंतिम दिन के लिए की है। अब प्रभु, हम उन सारे लोगों के लिए हमारे राष्ट्रों के इर्द गिर्द, जैसे आज हम यहाँ वहाँ हर कहीं से सुनते हैं, वे जो आवश्यकता में हैं, उनके लिए आपसे मांगते हैं, उन्हें उनकी विनतियों को प्रदान करें प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं उस महान परमेश्वर के हाथों को सारे संसार के ऊपर मंडराते हुए देखें उनके मध्य, जो इस महान बातों के लिए देख रहे हैं। हमारे पाप के लिए हमें क्षमा करें, हमें आपकी आत्मा और आपके वचन के द्वारा पवित्र करें प्रभु, जिससे कि हम अपने आप को तैयार कर सके, आज्ञाकारी सेवक बने, प्रभु की इच्छा में आज्ञाकारी सेवक बन सके। आओ हम याद करें और हमारे हृदय में सोचने का प्रयास करें जो पहले के मसीह लोगों ने किया है। हमें किस प्रकार के लोगों से मिलना है? यदि हम उन लोगों से मिलते हैं जो व्यक्तिगत रूप से आपके साथ संपर्क में आए थे, कैसे उनके चेहरे विश्वास और आनंद से चमकते हैं? अवश्य ही उनका किस तरह से प्रभु के वचन के लिए जीना रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सारे मनुष्य के द्वारा पढ़े जाने वाली लिखित पत्रियां जब वे चलते और उन लोगों के बीच में रहते थे। परमेश्वर इसे एक बार फिर से प्रदान करें। होने पाए हमारे जीवन आपको पूरी तरह से समर्पित हो, जिससे कि वो पवित्र आत्मा स्वयं हम में से होकर जिए, हम में से होकर बोले प्रभु। होने पाए हम अपने मनों में याद करते हैं जब हम उस रास्तों पर चलते हैं, संसार के लोगों से टकराव करते हैं, हमें उनके जैसा नहीं होना चाहिए। और प्रभु, हमें किनारे होकर उन्हें स्थान को देना है यहाँ धरती पर जो उनका उचित दर्जा है। हम पीछे की जगह को लेंगे ये जानकर कि हम किसी और जगत के प्रतिनिधि हैं। हमारे पास एक राज्य है जो सामर्थ्य के अंदर आ रहा है प्रभु, और हमारा राजा बहुत ही जल्द पहुंच रहा है, और जो सारे राज्यों पर कब्जा करेगा जो उसके अधिकार में है, और वह फिर से शासन और राज्य करेगा उसके साथ इस धरती पर हजारों वर्ष तक, और वे उसके साथ हमेशा के लिए होंगे। प्रभु, इस बात को विचार करते हुए अब हम आगे हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर की ओर देख रहे हैं, हम हमारे अंगीकार की ओर देख रहे हैं। यदि हमने कुछ गलत किया है, कुछ गलत कहा है या कुछ गलत सोचा है जो आपकी इच्छा के विपरीत था, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें साफ करे, हमारी अगुवाई करे प्रभु। जैसे आज रात बहन ने कहा, उसके और उसके पति के बारे में वे शिकागो के मार्ग पर होंगे, उनकी अगुवाई करे प्रभु परमेश्वर उस स्थान की ओर, जिससे कि आप उन्हें इस्तेमाल कर सके, जिससे कि वे दूसरे लोगों के लिए उजाले की किरण बन सके जो अंधकार में ढूंढ रहे हैं, जो हमारे प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। अब हम इस सभा को आपको समर्पित करते हैं और आपके सुधार के वचन को सुनते हुए, जिससे कि हम जान सकें हमें इस महान घड़ी के लिए कैसे तैयार होना है, यीशु मसीह के नाम में हम इसे मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद भाई, मैं इसके लिए जरा भी अपेक्षा में नहीं था, मैं घर पर ही था, मैंने ऐसा महसूस किया यदि मुझे सचमुच में कहीं पर भी आपातकालीन स्थिति में जाना पड़ता है तो मैं घर पर ही रहूंगा, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है और प्रार्थना की सभा पर जब मैं नहीं आता हूं, और मैं एक तरह से आने वाला नहीं था और यहाँ पर आने की अपेक्षा में नहीं था, यहाँ तक मेरे परिवार के लिए भी अपेक्षा में नहीं था, मैं तब उठकर और निकल आया और तो मैंने कहा मैं प्रार्थना सभा में वहाँ पर जा रहा हूँ, और उसके पास समय भी नहीं था कि वह तैयार होकर आए, इसलिए कि वह नहीं जानती थी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो मैं वहाँ बहन की और भाई की गवाही को सुनकर बहुत ही खुश हूँ, जो कहीं तो दक्षिण कैरोलिना या उत्तर कैरोलिना के विषय में थी। क्या ये ग्रीनविल की थी? दक्षिणी पाइन्स। जी हाँ, भाई लीवेल आज यहीं पर थे। मैंने आज यहाँ उन्हें बपतिस्मा की सभा में बपतिस्मा दिया है, जो यहाँ पर बपतिस्मा की सभा हुई थी। भाई लीवेल आप उन्हें जानते हैं, और वहाँ पर जो सेवक हैं भाई पार्कर थॉमस को, वहाँ पर एक मैं उस समय को याद करता हूँ, एक बहन के ऊपर परछाई आई थी। यह एक बड़ा प्रमाण था, बहन जो कि पवित्र आत्मा कभी कभी आगे जाकर और हमारे विश्वास को परखता है यह देखने के लिए, और दूसरों के विश्वास को परखता है। जब आप सीधे सीधे किसी चीज को देखने के लिए रुके होते हैं और कुछ तो देखते हैं और इसे कहते हैं, दूसरे लोग देखते हैं और इसे नहीं देख पाते हैं, वे कहते हैं वो चीज वहाँ पर नहीं है, देखा लेकिन वो वहाँ पर होती है। अब वहाँ पर कोई भी एक ऐसा नहीं था जो उस उजाले को देख सकता जो पौलुस के ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन यह वहाँ पर था। खुद यूहन्ना को छोड़ किसी एक ने भी उस पिंडुक को नीचे आते हुए नहीं देखा उस रूप में, और यीशु के ऊपर रुका हुआ था, लेकिन यह वहाँ पर था, देखा। और इसीलिए फिर कुछ समय के बाद मैं लोगों से उस उजाले के बारे में बात कर रहा था जो एक अग्नि के खंभे के जैसे वहाँ पर था। किसी ने भी इसे विश्वास नहीं करना चाहा, लेकिन कैमरे की यंत्र की आंखों ने इसे पहचान लिया कैसे वो वहाँ पर आ गया था, और वो दुष्ट आत्मा बहुत ही काली थी। ये बिल्कुल हमारे जीवन के जैसा होता है, हम परछाइयां हैं, और हम यदि हम एक उजाला हैं यहाँ पर, यदि हमारा जीवन उस दिन के उजाले को पूरा करता है तो हम उजाले में चल रहे हैं। यह तो बस इस तरह से है जैसे कि आप बाहर देखकर कहते हैं मैं सूरज को देखता हूँ, उस दोपहर के समय पर आप सूरज की परछाई को देखते हैं, यह सूरज का एक प्रतिबिंब है, यह खुद सूरज नहीं है, लेकिन यह साबित करता है कि वहाँ पर एक सूरज है, यह साबित करता है कि वहाँ पर एक सूरज है। और अब जब मैं देखता हूँ जैसे वहाँ पर आप बैठे हुए हैं, पंखे को घुमा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जीवित हैं, लेकिन यह तो केवल जीवन की एक छाया है, क्योंकि किसी भी चीज के वहाँ पर होने के लिए इसमें एक अंधकार होना है ताकि एक परछाई को बनाए, समझे, क्योंकि एक छाया को बहुत ही अधिक अंधकार और बहुत ही अधिक उजाले को धारण करना होता है ताकि एक परछाई को बनाए, और यह साथ मिलकर अंधकार नहीं हो सकते हैं और साथ मिलकर प्रकाशमान नहीं हो सकते हैं। यदि एक अंधकार है तो ये वास्तव में अंधकार है, यदि ये उजाला है तो वहाँ पर कोई भी छाया नहीं है, छाया बनाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि ये अंधकार और उजाले को एक साथ मिलाते हैं तो यह एक छाया को बनाता है, इसीलिए हम वास्तव में उस उजाले की परछाइयां हैं। अब आप एक जीवन को प्रतिबिंब कर रहे हैं जो कहीं पर तो है, यदि आप हैं और एक मसीही हैं, यह एक छाया होनी है, यह तो केवल यही साबित करता है कि वहाँ पर एक जीवन है जहाँ आप कभी नहीं मर सकते हैं, क्योंकि इस जीवन में वो मृत्यु है, समझे, लेकिन यह एक छाया है क्योंकि यह आप जी रहे हैं, एक चलती फिरती सृष्टि जिसके अंदर क्षमता है देखने की, सोचने की, चलने फिरने की, बात करने की, और ये शरीर की पांच चेतनाएं हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं वे मर रहे हैं, और वहाँ पर बहुत सारी तकलीफें हैं, आप जानते हैं यह केवल हो सकती है, यह एक प्रतिबिंब है, देखो, जिसमें जीवन और मृत्यु एक साथ मिले हुए हैं। शरीर को तो मरना होता है, लेकिन यदि आप अपने मरणहार जीवन के द्वारा प्रतिबिंब कर रहे हैं उस स्वर्ग के उजाले को, तब आप अनंत जीवन को प्रतिबिंब कर रहे हैं जो परमेश्वर का है। फिर जब आप मरते हैं, अब आप बाद में उजाले के पास अब नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसे तो आपने प्रतिबिंब किया है। यदि आप अंधेरे संसार के हैं तो आप उसे प्रतिबिंब करेंगे, और आप उसे कर सकते हैं, अंधकार में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, समझे, इसलिए हम एक प्रतिबिंब में हैं। तो हम देखते हैं कि जितना निश्चित रूप से पवित्र आत्मा जीवन और उजाले को प्रतिबिंब करता है, वैसे ही मृत्यु अंधकार को प्रतिबिंब करती है, और यहाँ पर दोनों ही है। कल सप्ताह के अंत में हो सकता है रविवार तक हम इस छोटी तस्वीर को एक बड़े आकार में करके जिससे कि हम इसे सूचना पट पर लगा सकें, जहां पर आपके लिए वो तस्वीरें लगी होती हैं, जो वहां पर सूचना पट पर होती हैं। मैं नहीं जानता आपने इसे ध्यान दिया है या नहीं। और फिर और लगभग एक सप्ताह पहले जमैका में, जहां पर मैं एक मिशनरी काम में गया था, हम टेपों को संसार भर में भेजते हैं और 7 मोहरों को इसमें वापस लाया गया, बहुत दूर जमैका के टापू के अंदर वापस भेजा गया वहां तटवर्ती में, और वहां से ये टापू बहुत ही प्राचीन ब्लू माउंटेन के पीछे है और उनके पास एक टेप रिकॉर्डर है जो हमने उन्हें दिया है, और वहां के रहने वालों के पास किसी समय का एक टेप रिकॉर्डर है। पहले आपके पास पुराना सुई रखकर चलाने वाला एक रिकॉर्डर होता था जिस पर सुई रखकर इस तरह से चलाते हैं, बाद में हर थोड़े मिनटों में इस पर सुई को वापस रखना होता था। इस झुंड के पास एक छोटी सी 6 वोल्ट की बैटरी है या ऐसे ही कुछ जो टेप रिकॉर्डर को चलाती है, और वे सब एक साथ बैठे हुए थे जो यहाँ पर उस रात का विषय था, उस मोरों को सुन रहे थे। मैं सोचता हूँ ऐसा ही था, और जिस समय पर मैं टेप पर बोल रहा था उन्होंने कमरे में आते हुए ध्यान दिया, वही अग्नि का स्तंभ वहाँ पर आ गया और जहाँ पर टेप रिकॉर्डर था वहाँ पर चला गया और इसके ऊपर जाकर ठहर गया, और उन्होंने जाकर एक कैमरे को लिया और इसकी एक तस्वीर को खींचा, और ये वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही एक था जो ठीक इसके ऊपर मंडरा रहा था। अब इस तस्वीर को हम बड़ा कर रहे हैं, जिसे बाहर वहाँ सूचना पट पर लगा देंगे जिससे कि आप उसे देख सकते हैं। हम परमेश्वर के महान अनुग्रह के लिए आभारी हैं, जिसे वो हमारे लिए लेकर आया है, जिसने हमें इस दिन में उसकी उपस्थिति के अंदर लेकर आया। तो अब हम बहुत सी बातों के लिए आभारी हैं। अब मैं सोचता हूँ, मैं यहाँ पर देखूंगा और देखूंगा यदि मुझे कुछ तो लिखा हुआ मिल जाता है या कुछ तो, और जिस पर मैंने बोला है या हमें किसी तरह का एक, मेरे पास यहाँ पर कुछ तो लिखा हुआ है, जो कुछ भी हो यहाँ इस एक किताब के पीछे है, मुझे यदि मुझे कुछ तो मिल सकता है, हो सकता है प्रभु मुझे किसी बात पर कुछ तो कहने के लिए दे दे। और जब हम प्रार्थना करते हैं, अब रविवार के लिए हम अपेक्षा के अंदर हैं। मैं संदेशों में बोलते आ रहा हूं और मैंने रविवार को आज लोगों को बहुत समय तक यहां पर रोके रखा इस संदेश पर, तू मेरे निमित्त क्यों रोता है, लोगों के लिए बोल और आगे बढ़। अब रविवार को चंगाई की सभा है जहां पर बीमारों के लिए प्रार्थना की जानी है। अब आप बीमारों को लेकर आते हैं और इस बीमारी के होने का कोई कारण होगा जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वे चंगाई को नहीं पाते हैं तो। और मैं चाहता हूं यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो रविवार सुबह को छोटी सभा भी होगी, तो इसलिए मैं चंगाई की सभा को करने जा रहा हूं और सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। और बिली पॉल और उसमें से कुछ लोग रविवार की सुबह यहां पर होंगे लगभग 8 बजे, जब कलीसिया खुलती है, ताकि लोगों को कार्ड बांटे जाएं जब यहां इस दरवाजे पर वे आते हैं या जैसे जैसे वे अंदर आते हैं। और अब बाद में मैं कोशिश करना चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने मुझे एक प्रकार से उन कारणों पर मुझे कुछ परख को दिया है कि क्यों लोग चंगाई को नहीं पाते हैं, और मैं सोचता हूँ ये उनकी ना समझने की कमी की वजह से है, और मैं सोचता हूँ हो सकता है कि प्रभु की इच्छा हुई तो रविवार की सुबह को हम इस पर बोलेंगे। अब बुधवार की सभा एक छोटी सी सभा होगी जहाँ पर हम एकत्र होकर और प्रार्थना करेंगे जैसे हम एक साथ संगति करते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ बड़ी बातों में से एक जिसे मैं इस दिन में देखता हूँ कि जो हम विश्वास करते हैं उसके प्रति हम में ईमानदारी की कमी है, समझे समझे। यदि परमेश्वर जॉन वेस्ली के दिनों में किया होता जो उसने इस दिन में किया है, मार्टिन लूथर के दिनों में, या जो कोई भी है, जैसे हम उसे जो करते हुए देख रहे हैं, दोनों कलीसिया के द्वारा साबित हुए हैं, आत्मा के द्वारा और विज्ञान के द्वारा और हर एक कार्य के द्वारा, इसके हर एक बूंद को जानना है। और परमेश्वर का वचन यहाँ इसे घोषित कर रहा है और इसे बता रहा है इससे पहले कि यह पूरा हो, और बाद में इस पर कार्य करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं और उसी बात को दिखाते हैं जो उसने कहा है, यह सिद्ध रूप से पूरा होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कहा है। और फिर भी हम ऐसे ही सुस्त की तरह बैठे रहते हैं, जब यदि हम सोचते हैं तो ठीक है, मैं सोचता हूँ इसका मेरे लिए क्या अर्थ हो सकता है, सोचता हूँ कलीसिया का मेरे लिए पूरी तरह से क्या महत्व हो सकता है, या सोचता हूँ क्या मैं सचमुच इसमें सम्मिलित हूँ। मैं सोचता हूँ रविवार सुबह को मैं उन कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करने की कोशिश करूँगा जो हमारे लिए कुछ खुलासा कर सकता है। अब आज रात मुझे कुछ तो मिला है यहाँ के लिए निकलते वक्त, इससे पहले मैं यहाँ पर आऊँ मैंने सोचा क्या हो यदि भाई नेविल, यदि मैं यहाँ पर आऊँ वे बोलते हैं मंच पर जाकर और मैं बोलूँ और वो ऐसे नीचे बैठ जाते हैं समझे। मैंने सोचा अच्छा होगा कि मैं कुछ वचनों को लिख लूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वो बहुत ही अच्छा भाई है और हम उसकी सराहना करते हैं। इससे पहले वचन के लिए प्रार्थना करें, मैं एक भाई की पहचान देना चाहता हूँ। मैं उन दो लोगों को इस समय पर नाम नहीं ले सकता हूँ और वे दोनों भाई यहाँ पर हैं जो मेरे मित्र हैं। वे सेवक और सुसमाचारक हैं जो बाहर विभिन्न स्थानों में प्रचार करने जाते हैं। उन्होंने टेप के द्वारा इन संदेशों को सुना। वे दो नौजवान पुरुष विभिन्न संस्थापक कलीसियाओं से बाहर आए हैं और उनमें से एक ने बहुत ही दिलचस्पी दिखाई, इतना तक कि वो अभी हाल ही में हवाई जहाज से एक सभा को खत्म करके वहाँ टूसान में आया। मैं सोचता हूँ मैं बिजनेस में नाश्ते की सभा में था और वो जवान पुरुष जो कि बहुत ही अच्छा नौजवान भाई है यहाँ पर आया था और वे कैंसास से हैं और वे इतना दूर हमारे पास आए हैं ताकि उन बहनों से विवाह करें। मैं इसकी सराहना करता हूँ ये सोचकर कि वे लोग आपकी प्रार्थनाओं पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनकी सुनेगा और उत्तर देगा। वे जवान लोग इस तरह से अपने जीवन का आरंभ कर रहे हैं और जब वे हमारे पास कल आए उनसे विवाह करने के लिए, वे विवाह के लिए इंडियाना राज्य के कानून की आवश्यकताओं को जानने के लिए आए हैं। यदि उनके लहू की जांच भी होती है तो उन्हें यहाँ पर 3 दिनों तक इस राज्य में रुकना पड़ता है इससे पहले उनका विवाह हो सके, इसलिए उनका विवाह शुक्रवार सुबह तक नहीं हो सकता है। और मैं वहाँ हमारे भाई से पूछूंगा जो वहाँ पीछे बैठे हैं, यदि वे खड़े होकर और हमें बताते हैं कि वे कौन हैं और उसकी वो प्यारी सी छोटी महिला कौन है और उसके साथ वो भाई कौन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम निश्चय रूप से इन जवान राजदूतों को देखकर शुभकामना देते हैं जो प्रभु यीशु के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर की आशीषें उन्हें मार्ग पर तेजी से बढ़ाए। और जैसे मैं सोच रहा था हम प्रभु के आगमन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और इन नौजवान पुरुषों और नौजवान महिलाओं को उनके हृदय में मसीह के लिए सेवा करने के उद्देश्य को देखते हैं जो मुझे रोमांचित कर देता है। देखो यह देखकर कि वे इस तरह से बढ़ रहे हैं, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे मेरे भाइयों और बहनों। अब आइए एक छोटी किताब की ओर जाएंगे जिस पर मैंने मेरे जीवन में इससे पहले कभी नहीं बोला है और यह बहुत ही एक ही अध्याय है जो कि फिलेमोन की किताब है। और यह एक मैं आयरलैंड से हूँ और मैं मेरे दांतों के नीचे चारों ओर एक तार लगी हुई है जिससे कि कुछ दांतों को पीछे के स्थान की ओर दबाए रखे। मैं कभी कभी उनके नामों को सही उच्चारण भी नहीं कर पाता हूँ जबकि मैं जानता हूँ वो क्या है और कभी कभी मैं मेरी पढ़ाई लिखाई की कमी की वजह से उन्हें सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता हूँ। तो फिलोमिन किसी ने तो वहाँ पीछे से कहा जो मैं वास्तव में सोचता हूँ कि इसका सही उच्चारण है। अब पहला पद मैं इसमें से एक या दो शब्दों को लूंगा। पौलुस जो यीशु मसीह का एक कैदी है और यही है जिसका आज रात में एक विषय की नाई इस्तेमाल करना चाहता हूँ यदि प्रभु की इच्छा हुई तो। एक कैदी, अब आपको समझने में मुश्किल हो सकती है यह सोचकर वो खुद को एक कैदी बता रहा है, एक आजादी से जन्म लिया हुआ मनुष्य जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है लेकिन फिर भी वह अपने आप को एक कैदी करके कहता है। और अब हम देखते हैं जब वह कुरिन्थियों को संबोधित कर रहा है, पौलुस जो एक यीशु मसीह का प्रेरित है अगली बार कहता है पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का दास है, जब दूसरे स्थान पर वो तिमुथियुस से बात करता है। अब जब वो फिलोमेन को यहाँ लिखता है वह कहता है पौलुस यीशु मसीह का एक कैदी, पौलुस एक प्रेरित। मैं एक रात को इस पर प्रचार करना चाहूँगा, पौलुस एक सेवक, इस पर प्रचार करूँगा और बाद में पौलुस एक कैदी। लेकिन आज रात इस पर विचार करने पर समय लगेगा। मैं इस वजह से विषयों में से आज रात को एक को लेना चाहूंगा, पौलुस एक कैदी, और विषय को लेना चाहता हूं एक कैदी। अब आइए हम अपने सिरों को कुछ क्षण के लिए झुकाएंगे। प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से सक्षम है, जो इस बाइबल के पन्नों को पलट सकता है, लेकिन केवल पवित्र आत्मा ही इसके उजाले में अनुवाद कर सकता है कि इसका क्या अर्थ होना है। हम उससे मांगते हैं कि वह अब आकर और हमारी सहायता करे कि हमें समझाए ये किस बात से संबंधित था। वो महान तेजस्वी नबी पौलुस, वो फिर भी वह खुद को एक कैदी कहता है। होने पाए पवित्र आत्मा इसे हम पर प्रकट करे जैसे हम उस पर रुके हुए हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब मैं कल्पना कर सकता हूँ पौलुस जब उसने इस पत्र को फिलोमेन के लिए लिखा, किस तरह वो जेल में बैठा था, वहाँ नीचे एक काल कोठरी में एक कैदी, और वह उसके स्थान में रहकर अच्छी तरह से जान सकता था कि शब्द का अर्थ क्या था। वह सलाखों से घिरा हुआ था। वह केवल तभी आजाद हो सकता है जब कोई तो आकर उसे आजाद करे, और वह समझ गया था कि कैदी होना क्या होता है। और तब फिर से मैं सोचता हूँ उस प्रेरित का अर्थ केवल कुछ न ही वास्तव में अपनी वर्तमान परिस्थिति के बारे में बता रहा है जो उसकी शारीरिक दशा में होने की है, जो यहाँ इस जेल में बैठा हुआ है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि वह उसके अस्तित्व का उल्लेख कर रहा है, उसकी आत्मा, उसकी इच्छा, जिसे यीशु मसीह के लिए कैदी होना है। अब हम सब ने जन्म लिया है, हम एक चुनाव करने के लिए आजाद हैं, जिससे हम कोई भी निर्णय को ले सकें जो हम चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा उचित रूप से करता है क्योंकि उसे हर एक मनुष्य को उसी आधार के ऊपर रखना ही है। या तो वह उसने पहले मनुष्य को गलत आधार पर रखा था, उसने उस मनुष्य को खुले रूप से चुनाव करने पर रखा। देखा, हम भी बिल्कुल वैसे ही आज रात आदम और हवा के जैसे ही हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। सही और गलत हमारे सामने रखा हुआ है, या इसमें से एक लेना है। जीवन और मृत्यु, हमें हमारा चुनाव करना है। इसका चुनाव करना यह आप पर निर्भर करता है, समझे। इसी तरह से आदम और हवा ने किया, और देखो, और उन्होंने गलत चुनाव को किया, और उसी के द्वारा पूरी जाति को, सारी मानव जाति को मृत्यु के अंदर रख दिया, मृत्यु का जुर्माना। और बाद में परमेश्वर मनुष्य के रूप में नीचे उतर कर आया और उस मृत्यु को ले लिया और मृत्यु के जुर्माने को भर दिया, जिससे कि जो उसके हैं, जो स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। अब यदि वो हमें ले लेता है बिना उसी तरीके के जो उसने आदम और हवा के लिए किया, केवल हमें किसी चीज के जरिए से ऐसे ही बाहर खींच लेता है, कहता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे तुम बचना चाहो या ना चाहो, तब तो उसने आदम और हवा को गलत आधार पर रखा, आपने देखा। लेकिन हम में से हर एक जन को इस दिन के लिए मृत्यु और जीवन के बीच में चुनाव को करना है। हम इसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी व्यक्त किया। यदि आपका उजाला साबित करेगा तो आपका जीवन बिल्कुल उसी तरह से साबित करेगा कि आप किस पक्ष की ओर हैं। मैं परवाह नहीं करता, आप भले ही कहते हो कि आप किस पक्ष की ओर हैं, आप हर दिन जो करते हैं यह साबित करता है कि आप क्या हैं। आपने पहले की कहावत को सुना होगा, आपका जीवन ऊंचे स्वर में बोलता है, मैं आपकी गवाही को नहीं सुन सकता हूँ, समझे। आपके कार्य बहुत ही ऊंचे स्वर में बोलते हैं। मैं हमेशा ही चिल्लाने और कूदने में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूँ जितना आप जीते हैं उससे ज्यादा मत कूदो, क्योंकि संसार इस बातों को देखेगा। आपने देखा, आपको उतना ही कूदना है जितना आप जीते हैं, इसलिए क्योंकि कोई तो आपको देख रहा है। और अब जबकि लोग कलीसिया नहीं आते हैं, उनमें से वे बहुत से बस नहीं आना चाहते हैं, और उनमें से कुछ नहीं आ रहे हैं जो सच्चे लोग हैं। उन्होंने कलीसिया में बहुत ही भ्रष्ट बातों को देखा है, इतना तक कि वे इसके साथ कुछ संबंध नहीं रखना चाहते, और हम इसके लिए बहुत सी बार खुला विचार रखते आए हैं। आप उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि देखो, लोगों का बर्ताव ही इस तरह से होता है, वह खुद को मसीह कहते हैं। वे संसार के लिए बहुत बड़ी रुकावट हैं, वे जो स्त्री और पुरुष हैं जो एक मसीह होने का दावा करते हैं, और उनके दावों से अलग ही जीवन को जीते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि न्याय के समय पर निराशाएं आएंगी, अब वे जो पापी, तस्करी, जुआरी, व्यभिचारी हैं, वो उनके दंड बताए जाने पर निराश नहीं होंगे कि उसे सनातन की आग में डाल दिया जाए, वे निराश नहीं होंगे। लेकिन जो व्यक्ति खुद को किसी प्रकार की कलीसिया के धार्मिकता के पीछे छिपाने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति को न्याय के दिन पर निराश होना पड़ेगा। समझे, जो एक मसीह होने का दावा करता है और किसी और तरह के जीवन को जीता है, ये उसके लिए अच्छा होगा कि वो आरंभ से ही किसी और तरह का कभी दावा नहीं किया हो और बाद में कोई अलग ही जीवन को जीना आरंभ करे, क्योंकि वह हमारे लिए सबसे बड़ी ठोकर है। क्योंकि वो दावा करने वाला है, वो कहता है कि वो एक मसीह है और किसी और ही प्रकार का जीवन जीता है। हमेशा ही आप अपने जीवन का उस बात से न्याय न करें कि आपके पास चिन्ह चमत्कार करने की सामर्थ है, और हमें खुद का न्याय उस बात से नहीं करना है कि हमारे पास वचन का कितना ज्ञान है, लेकिन हमेशा ही खुद का न्याय करें कि पीछे मुड़कर देखें और जांचें कि आप किस प्रकार के फल को ला रहे हैं जो जीवन आप वर्तमान में जी रहे हैं। समझे, जैसे मैंने कुछ समय पहले एक बिजनेसमैन की सभा में प्रचार किया जो फिनिक्स एरिजोना में थी, यीशु का प्रतिबिंब जो मसीह के जीवन को प्रतिबिंब करना है। मैंने कहा, मैंने यहाँ केंटकी में जन्म लिया था जो कि बहुत ही साधारण सा था, विशेषकर पहले जब मैं एक बालक ही था, और इस बालक के पास कभी भी रहने के लिए एक घर नहीं था जैसे हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सी खूबसूरत महिलाएं हैं जो आईनों में देखती रहती हैं। वे आईने उनके सारे घरों में होते हैं जिससे कि वे अपने बालों को ठीक से बनाए रखें और इत्यादि। लेकिन उस लड़के के पास एक छोटा सा आईना था जो कि बस छोटा सा एक टुकड़ा ही था जो उस पेड़ पर बाहर टंगा हुआ रहता था, जहाँ पर वो हाथ मुंह धोने की मेज होती थी, जहाँ पर उसके माता और पिता हाथ मुंह धोते थे और उनके बालों को बनाते थे और इत्यादि। इस पुराने छोटे से कांच के टुकड़े में देखकर जो एक पेड़ पर टंगा हुआ होता था, साफ कहूँ तो उस तरह के घर हमारे हुआ करते थे। हम बच्चों में से कोई भी उस आईने में देखना चाहता था। हम एक बक्से को लेकर और उस हाथ मुंह धोने की मेज पर चढ़ते और एक छोटे से टुकड़े पर देखते थे जिसे मैंने खुद कचरे से उठाया था, जो वहाँ केंटकी में था, जो यहाँ ऊपर इंडियाना ड्यूटी का पाइक में था। अब इस छोटे बालक ने कभी भी अपने आप को इस तरह से नहीं देखा था, तो वो उसकी दादी से मिलने के लिए शहर में आया और वो कमरों में घूमने लगा, और दादी का जो घर था वहाँ दरवाजे पर पूरा आईना था, और सो वह छोटा सा लड़का उस कमरे में यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। वो एक और लड़के को अपने सामने देख रहा था और उस आईने में छोटा लड़का भी दौड़ रहा था, इसलिए उसने सोचा कि उसे कुछ मिनट के लिए रुकना चाहिए और वो उस एक छोटे लड़के को देखेगा कि वो क्या करता है। और जब वो रुक गया, वह छोटा लड़का रुक गया, जब उसने अपने सिर को पीछे की ओर घुमाया और छोटे लड़के ने उसके सिर को घुमाया, उसने अपने सिर को खुजाया, छोटे लड़के ने भी अपने सिर को खुजाया। अतः वो जांचने के लिए नजदीक आया और पीछे की ओर मुड़ गया और उसकी माँ उसे देख रही थी और उसकी दादी उसे आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। कहा, क्यों माँ, यह मैं ही हूँ। तो मैंने कहा कि हम भी किसी को तो प्रतिबिंब करते हैं, देखा हमारा जीवन प्रतिबिंब करता है। और अब यदि हम नूह के समय में रहते थे, हम किसका पक्ष लेते थे? हम उस महान समय पर जिसमें नूह रहा था किसका पक्ष लेते थे? हम मूसा के दिनों में किसका पक्ष लेते थे? आप अहिल्या के दिनों में किसका पक्ष लेते थे? वो नबी जब सारा संसार एक उस बड़े आधुनिक शैली के समुदाय के भवंडर में चला गया था, आधुनिक इजाबेल की तरह, और उसने सारे प्रभु के सेवकों को दुनियावी तरीके के भवंडर के अंदर डाल दिया था और कलीसिया और वे याजक उसके सामने झुक रहे थे, क्या तुम उस प्रसिद्धि के पक्ष को लेते थे या तुम एलिया के साथ खड़े होते थे? अब प्रभु यीशु के दिनों में जब हम इस अप्रसिद्ध व्यक्ति के लिए सोचते हैं जो संसार के द्वारा पढ़ा लिखा नहीं था, यहाँ तक उन्होंने उसे कोई भी स्कूल में कभी जाते हुए नहीं देखा था और उसके पास कोई भी धर्म विद्यालय का अनुभव नहीं था, और फिर अवैध जन्म के नाम पर बड़ा हुआ था, और बाद में वह एक सुसमाचार को प्रचार करते हुए ऊपर आता है जो कि उनके द्वारा हर एक सिखाई हुई बातों के विरुद्ध था, और वो सेवकों को और उनके संप्रदाय और इत्यादि को दोषी ठहरा रहा था, और संप्रदायों ने एक बयान को व्यक्त किया, यदि कोई भी इस कहलाने वाले नबी को सुनने के लिए भी गया, उन्हें उनके उपासना स्थल से बाहर कर दिया जाएगा, जो कि एक घातक पाप था जिसे उन्हें मानना था। केवल एक ही जरिए से आराधना कर सकते हैं, जो मेमने के लहू के नीचे था, उन्हें इस बलिदान के नीचे आना था, और तब उन्हें बहिष्कृत किया गया था, और क्या ही एक महान बात थी। और इस मनुष्य को इसी तरह से नकारा गया था, और फिर भी वह पूरी तरह से वचन के अनुसार सही बैठता था, लेकिन उन्होंने उस तरह से इसे नहीं जाना आप किसका पक्ष लेते, समझे? अब जो अभी आप जीवन को जी रहे हैं, अब ये प्रतिबिंब करता है कि तब उस समय पर आपने क्या किया होता था, क्योंकि आप अब भी उसी आत्मा से ग्रस्त हैं, समझे? यदि आप अभी उनके साथ पक्ष को लेते हैं, आपने ऐसा उस वक्त किया होता था, क्योंकि वही आत्मा जो अब आप में है वो उस वक्त उन लोगों के अंदर थी। देखा, शैतान उसकी आत्मा को कभी नहीं लेता है, यह तो केवल एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के अंदर जाती है। ना ही परमेश्वर उसकी आत्मा को कभी लेता है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है, समझे? सो वही आत्मा जो एलिया पर था वो एलिशा पर आ गया, वही आत्मा योन्ना बपतिस्मा देने वाले पर आया, और इसी तरह से आगे। पवित्र आत्मा मसीह के ऊपर था, चेलों के ऊपर आया, वहाँ से होते हुए अब भी लोगों पर है। आपने देखा, परमेश्वर उसकी आत्मा को कभी नहीं लेता है, इसलिए हम यहाँ पर बचे हुए हैं ताकि एक चुनाव को करें। और मैं यहाँ पर ऐसा नहीं देख पाता हूँ जहाँ पर पौलुस किसी भी चीज के प्रति शोक को प्रकट कर रहा हो और कह रहा हो उसे दुख है कि वह एक कैदी है, लेकिन वह खुद को संबोधित कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि पौलुस जब उसने इस पत्र को उस कलम से लिखा, उस रात को पवित्र आत्मा उसे लिखने के लिए प्रेरित कर रहा था। जो हो सकता है ये आज रात के लिए भी हो, जिससे कि हम हमारे मूल पाठ के लिए विषय को निकाल सके, ताकि दिखाएं कि पौलुस ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह वचन के अनुसार है और यह वचन के अनुसार होना अनंतता है। मैं सोचता हूँ कि वो इस गंदे पुराने जेल में बैठा हुआ है, यहाँ पौलुस जो उसके सहकर्मियों को लिखता है, जो उसके भाई हैं, कि वह एक यीशु मसीह का कैदी है, इसलिए वो उसके आसपास जो है इसे देखने के द्वारा व्यक्त कर सकता है। अब वह जेल में था, लेकिन ये वो नहीं था जिसके लिए वो बोल रहा था, यह तो मसीह का दास था, उसके साथ एक सेवक था। वह यह बोल रहा था कि वह यीशु मसीह के वचन का एक कैदी था, क्योंकि मसीह वो वचन था। और पौलुस उसके दिनों में एक बहुत बड़ा धर्मशास्त्री रहा था, उसके पास एक आकांक्षा थी। वह एक मनुष्य था जो प्रशिक्षित किया गया था, एक व्यक्ति, एक मनुष्य के द्वारा, जिसका नाम गमलियेल था, जो उसके दिन में एक बड़ा शिक्षक रहा था, सबसे बड़े विद्यालयों में से एक जिसमें वह जाता था। उदाहरण के लिए, जैसे हम कहते हैं विटोन या बॉब जॉन्स या कोई बड़ा मूल सिद्धांत का विद्यालय, जिसे एक वचन के सेवक की नाई सिखाया जाता है, और वो बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा था, चतुर और बुद्धिमान लड़का था, जिसके पास एक बड़ी आकांक्षा थी, जो हो सकता है एक दिन उसके लोगों के लिए एक बड़ा याजक या महायाजक बनने की रही हो। उसके पास एक आकांक्षा थी, और तब हम देखते हैं कि यह बड़ी आकांक्षा जिसके लिए वो सीखते आया था, और उसने उसके लिए अपने सारे जीवन को व्यय किया था, हो सकता है लगभग 8 या 10 वर्ष की उम्र से लेकर लगभग 30 या 35 वर्ष की उम्र तक, जब उसने महाविद्यालय की पढ़ाई लिखाई को पूरा किया और इस उपाधि को हासिल किया था, और वो उसके सारे उपाधि पत्र और सारी चीजों के साथ था, और पूरी अच्छी तरह से याजक पद के लिए खड़ा था, यहाँ तक यरूशलेम का वह महायाजक भी था, और उसके पास उसके लिए आज्ञा थी, वो लिखित व्यक्तिगत आज्ञा थी, और जो उस भरोसेमंद शाउल से थी, वहाँ दशमिश रास्ते में जाकर उन्हें ढूंढो, और जो परमेश्वर के आराधना करते हैं, जो परमेश्वर ने कहा है इसके विरुद्ध है, और उन्हें बांधकर और उन्हें जेल के अंदर डाल दो। उसके पास आज्ञा थी कि आवश्यकता पड़े तो वह उन्हें मृत्यु को भी दे सकता है यदि वह चाहे तो। उसके पास एक बड़ी आकांक्षा थी, और अब वो सब जिसके लिए उसने प्रशिक्षण किया था, परमेश्वर ने उसमें से उस सब को निकाल दिया था, समझे? और जो उसका उद्देश्य था, और जिसके लिए उसके पिता ने पैसों को लगाया था, और उसके माता और पिता की आकांक्षाएं थी, और सब कुछ उससे निकाल ली गई थी, क्योंकि उस परमेश्वर के पास कुछ और ही बात थी। इसीलिए वो उसके जीवन उद्देश्यों से, जिसका वो एक कैदी था, और वो यीशु मसीह का एक कैदी बन गया था, जो कि वचन था। उस दशमिश के रास्ते पर पौलुस बदल गया था, वहाँ नीचे की ओर जा रहा था, लगभग 11 बजे की बात है, शायद दोपहर का समय था, और वह नीचे जख्मी पड़ा हुआ था, और उसने एक आवाज को कहते हुए सुना, शाउल तू मुझे क्यों सताता है? और उसने ऊपर देखा, और ऊपर देखते हुए एक यहूदी होने के कारण, और वह जानता था कि वह अग्नि का स्तंभ वो प्रभु था जिसने इसराइल के बच्चों की अगुवाई की, इसलिए वह जानता था यह वही है। याद रखना, वे इब्रानी किसी को भी प्रभु कहकर नहीं बुलाते हैं, जो कि इंग्लिश के बड़े अक्षरों में है LORD, जब तक कि वह उसे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। यह वही है क्योंकि वह धर्म शिक्षा का सीखा हुआ व्यक्ति था। और जब उसने ऊपर देखा और उसने जब इस एक उजाले को, एक अग्नि का स्तंभ को देखा जिसने जंगल में से होते हुए उसके लोगों की अगुवाई की थी, और उसने कहा, प्रभु एलोहिम, इंग्लिश के बड़े अक्षर LOR, प्रभु आप कहाँ पर हैं? और इस धर्म ज्ञानी के लिए क्या ही एक अचंभित बात रही होगी यह सुनना, मैं यीशु हूँ, वही एक जिसका तू बहुत ही विरोधी था, और क्या ही एक बड़ा मोड़ था। ओह ओह, ये इस मनुष्य के लिए निश्चय एक भयानक बात रही होगी कि उसकी सारी आकांक्षा जो उसके पास थी, अचानक से ये जानना जिसे वो सताते आ रहा था, उसकी आकांक्षा ने उसे मुख्य बातों से दूर कर दिया जो वो करने वाला था, और निश्चय ही उसके लिए क्या ही एक बड़ा झटका रहा होगा इस प्रेरित के लिए, जब उसने कहा, मैं यीशु हूँ, वही एक जिसे तू सता रहा था, तू मुझे क्यों सताता है? और एक छोटी सी बात को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, आप देखना, जब वे कलीसिया का मजाक उड़ा रहे थे, असल में वे कलीसिया का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वे यीशु का मजाक उड़ा रहे थे। तू मुझे क्यों सताता है? तब किस तरह से पौलुस उसकी सारी बुद्धिमत्ता से, जो ये विश्वास करता है कि यह झुंड जिसे वो सता रहा था, यह वही परमेश्वर है जिसकी वह सेवा करने का दावा कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि इसकी कहानी के अंदर जाए बिना, मैं सोचता हूँ हम सब इसे समझने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं कि मेरा क्या यहाँ पर मतलब है। वही चीज आज यहाँ पर हो रही है। पौलुस इन सारी बातों को नकारते हुए, जो अभी भी बुद्धिमान और चतुर था, और जो उन अशिक्षित गलीलियों से बहुत ही चतुर था जिसे वो सता रहा था, वे उनकी नम्रता में उस मनुष्य को प्रभु करके पहले से स्वीकार कर चुके थे। लेकिन पौलुस उसकी बड़ी शिक्षा और उसके ज्ञान में से होते हुए इसे ग्रहण नहीं कर पाया था, और उसके लिए निश्चय ही यह बड़ा मोड़ रहा होगा, और वो जख्मी होकर अंधा हो गया था, इसलिए वह उसके कार्य आदेश को आगे नहीं ले गया होगा, और उसे एक रास्ते पर सीधी नामक स्थान के लिए अगुवाई हुई, और वह किसी का तो घर था। और बाद में वहाँ पर नबी आता है जिसका नाम हन्यास था, जिसने एक दर्शन को देखा था, उसने उसे आते हुए देखा था कि वह कहाँ पर था और कहाँ चला गया था जहाँ पर वो था, और वो अंदर गया और कहा, भाई शाऊल, उस रास्ते पर तुझ पर प्रभु प्रकट हुआ था, उसने मुझे भेजा है जिससे कि मैं अपने हाथों को तुझ पर रख सकूं और तुम अपनी दृष्टि को पाओगे और पवित्र आत्मा से भर जाओगे। देखो वह कहाँ पर था, और अवश्य ही पौलुस के लिए क्या ही ये बात रही थी। देखा, वो सब जो कुछ भी उसे करने के लिए सिखाया गया था, ये सब उसके विपरीत था। सो अब उसकी सारी पढ़ाई लिखाई और जो उसके पास थी, अब उसके लिए ये बस व्यर्थ ही थी। अब वह जान गया कि उसके पास एक अनुभव था, इसलिए यह हमारे लिए एक अच्छी सीख है कि केवल अनुभव ही काफी नहीं होता है, इसे तो प्रभु के वचन के अनुसार अनुभव होना है। इसीलिए वो इसे देखते हुए और तब यह समझ गया कि यह कुछ तो महान बात थी कि उसके इसे पाने से पहले किसी और ने इसे पा लिया है। वो अरेबिया के रेगिस्तान में उसे 3.5 वर्ष के लिए लेकर गया। बाइबल को लेकर जो उस वक्त पुराना नियम हुआ करता था, और वहाँ से नीचे जाते हुए इस अनुभव के साथ तुलना कर रहा था जो उसके पास था, और देख रहा था कि यह वचन के अनुसार है। तब क्या होता यदि उसने कहा होता, तो ठीक है, मैं सोचता हूँ यह छोटी सी ऐसी कोई घटना गुजरी है और आगे बढ़ गया होता, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही जाऊंगा। अब उसे किसी चीज से आजाद होकर एक कैदी बनना था, और इसके साथ तुलना करने के बाद और देखते हुए कोई आश्चर्य नहीं वह एक तरह से इब्रानियों की एक किताब को लिख सका। समझे, वो 3.5 वर्ष वहाँ वचन में बना हुआ था और उसी परमेश्वर को ढूंढ रहा था जिसने उसे बुलाया, उसे वापस लेकर जा रहा है और उसकी सारी बुद्धिमत्ता को बदल रहा है। वह सब कुछ बदल देता है जो उसके कभी विचार रहे थे, और वह जो उसने बनने का प्रशिक्षण लिया था उसकी सारी आकांक्षा उसमें से मिट गई थी और वह एक कैदी बन गया था। परमेश्वर का प्रेम इतना जबरदस्त था और एक ऐसा प्रकाशन कि वह इससे दूर नहीं जा पाया। यही वह सच्चा अनुभव है जो हर एक सच्चे विश्वासी को होना है जो परमेश्वर से मुलाकात करता है। आप कुछ ऐसी चीज के संपर्क में आते हैं जो कि बहुत ही महान है, जिससे आप हर एक चीज को छोड़कर एक कैदी बन जाते हैं। समझे, आप हर एक चीज से दूर चले जाते हैं, अपने आप को इसके लिए कैदी कर देते हैं। इसे एक समय बताया गया था कि जहां यीशु ने कहा स्वर्ग का राज कुछ ऐसा है जैसे एक मनुष्य जो मोती को खरीद रहा है। जब उस मनुष्य को वो मोती मिल जाती है, उस एक बहुमूल्य मोती को खरीदने के लिए वह सब कुछ बेच देता है जो उसके पास था। और इसी तरह से यहाँ पर है, आपके पास एक मानसिक विचारधारा है, आपके पास एक धर्मशास्त्र का अनुभव हो सकता है, लेकिन जब वो समय आता है जब आपको सचमुच में एक वास्तविक चीज मिल जाती है, आप सब कुछ बेच देते हैं जो आपके पास है और आप खुद को इसके अंदर समीप ले जाते हैं। पौलुस जान गया कि यह क्या था। उसने देखा वो किस चीज के साथ जुए में जूता गया था। जैसे हम एक घोड़े को कुछ तो खिंचाव के लिए जुए में जोतते हैं, और पौलुस इस अनुभव को बाद में जान गया और उसके पास एक प्रकार का 3.5 वर्ष का बाइबल के अनुसार अनुभव था। वो जान गया कि परमेश्वर ने उसे चुना है और उसे पवित्र आत्मा के द्वारा जुए में जोता गया है ताकि अन्य जातियों को उसकी उपस्थिति के सुसमाचार की ओर खींच लाए। आत्मा ने स्वयं उसे जुए में जोत दिया। और हम आज परमेश्वर के दास की नाई जुए में जोते गए हैं, जुड़ गए हैं। हम नहीं जा सकते हैं, हम इसके साथ समा गए हैं, वचन से जुड़ गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और क्या कहता है, आप इसके साथ जुए में जोते गए हैं। इसके विषय में कुछ तो है जिससे आप बस दूर नहीं जा सकते हैं। आपको इसके साथ पवित्र आत्मा के द्वारा जुए में जोता गया है, आपको वचन से जोड़ दिया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और क्या कहता है, यह वचन है जो हमेशा इसके साथ जोते रखता है, जो जुए को इसमें रख देता है। आत्मा के द्वारा वचन के लिए वह जुए में जुत गया था। उसका अरेबिया, वहाँ अरेबिया के रेगिस्तान के पीछे प्रशिक्षण हुआ था, जहाँ उसकी सारी पिछली बातें और वे अनुभव और वे आकांक्षाएं उसने उन सारी चीजों को निकाल कर फेंका था। अब यही है जहाँ हम आज देखते हैं कि जिसे हमें निश्चय ही पहले निकाल फेंकना होगा, और लोग उन चीजों को नहीं निकालना चाहते हैं। मेथोडिस्ट भाई थोड़ी बहुत उनकी मेथोडिस्ट शिक्षा को पकड़े रहना चाहते हैं। बैप्टिस्ट भाई थोड़ी बहुत उसकी बैप्टिस्ट शिक्षा को पकड़े रहना चाहते हैं, समझे। लेकिन आपको पूरी तरह से हर एक चीज को निकाल कर फेंकना ही होगा और बस एक नए सिरे से फिर से जन्म लेना होगा और वहाँ से निकले और पवित्र आत्मा को अगुवाई करने दें। और आप ये नहीं कह सकते हैं तो ठीक है, अब मेरे पिता ने कहा जब वे उस कलीसिया में गए उन्होंने अपने हाथों को पास्टर से मिलाया था, वह एक अच्छे सभ्य सदस्य है। वो हो सकता है उनकी पीढ़ी के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन हम एक अलग पीढ़ी है, समझे। अब हमें समय के लिए बाइबल की ओर वापस आना ही होगा। वे याजक भी जुए में जूते हुए थे, लेकिन आप देखें उन्हें दूसरे समय की समाप्ति पर आना ही था, लेकिन वे उनके पुराने जुए को निकालने में विफल हो गए थे और उन्हें एक नए जुए को ऊपर रखना था। और हम आज उसी बात को पाते हैं, हम एक संस्थापक युग में से होकर आए हैं, जैसे हमने कलीसिया कालों में से होते हुए साबित किया है, बाइबल और इत्यादि में से साबित किया है। लेकिन हम एक अब स्वतंत्र युग में आए हैं जहाँ पर पवित्र आत्मा स्वयं नीचे उतर कर आता है और खुद को प्रमाणित करता है और खुद को जानने को लगाता है, हर एक प्रतिज्ञा को करता है। जो उसने प्रतिज्ञा की है वह पूरी होती है। ओह प्रभु, क्या ही एक महान समय है। और वह इसे जानता था, एक और चीज को वह जानता था, वह इसके साथ जुए में जूते होने के कारण वो उन स्थानों में नहीं जा सकता था, और वह नहीं जो उसने की थी, लेकिन फिर भी वह जाना चाहता था। वह जान गया कि उसकी आकांक्षा ने भाइयों के बीच में से उसे खींच लिया है, जहाँ उसे आने के लिए आमंत्रित किया गया था, और फिर भी वह कुछ और करने के लिए आत्मा में आगे बढ़ रहा था, वह उसके खुद से नहीं करता था। हो सकता है किसी ने तो उससे कहा हो, भाई शाउल, भाई पौलुस, हम चाहते हैं कि तू यहाँ पर आए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी कलीसिया है हमारे पास बहुत से सभा के सदस्य हैं और तुझे बहुत ही प्रेम दान मिलेगा और इत्यादि। लेकिन आत्मा में से होते हुए वह बढ़ता गया। उसने सोचा, वहाँ पर मेरा एक भाई है, मैं वहाँ पर जाऊँगा और इस भाई को बचा लूँगा, उसे प्रभु के पास लाऊंगा। लेकिन आत्मा ने उसे कहीं और जाने के लिए विवश किया। वह एक कैदी था। बिल्कुल सही बात है। ओ परमेश्वर, हमें उसी तरह का कैदी बना, हमारे खुद के स्वार्थी आकांक्षा से और हमारे खुद के न्याय से और हमारी अच्छी सोच के तरीके से एक यीशु मसीह का कैदी बना। मैं सोचता हूँ यह एक महान बयान था कि मैं यीशु मसीह का एक कैदी हूँ। और याद रखें, वह वचन था, समझे? कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी इसके बारे में क्या सोचता है, यह वचन है, समझे? यदि आप एक वचन के लिए कैदी हैं, कोई भी संस्था आपको इसे झुका नहीं सकती है। यह वो वचन है। आप इसके लिए कैदी हैं। ऐसा ही है, आपको उसी तरह से ही कार्य करना है जिस तरह से यह कहता है। अब वह किसी स्थान पर भी नहीं जा सका था जहाँ पर वह जाना चाहता था, क्यों उस आत्मा ने उसे मना किया था। आपको याद होगा, बहुत सी बार पौलुस किसी स्थान पर जाने की कोशिश कर रहा था यह सोचकर कि वही वो स्थान है जहाँ मैं एक बड़ी सभा को कर सकता हूँ, लेकिन आत्मा ने उसे मना कर दिया। अब क्या यह साफ तौर से बात दिखाई देती थी? और क्या यह साबित होता है कि पौलुस एक कैदी था, एक यीशु मसीह का कैदी, उसके वचन के लिए आत्मा के द्वारा जुए में जूता हुआ? ओह, मैं इसे पसंद करता हूँ। जी हाँ, वह बंधा हुआ था, वह एक जंजीर से बंधा हुआ था और प्रेम के बंधन से, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, और केवल उसी की इच्छा को। वह एक कैदी था, वह एक प्रेम के बंधन में था, वह मसीह के साथ जुए में जूता हुआ था। वह किसी और के साथ कभी नहीं जूत सकता है, वह उसके साथ जुए में जूता हुआ था। और जहाँ पर उसे जाने की अगुवाई होती, वहीं पर उसे जाना होता था, परवाह नहीं करते हुए कि कितनी हरियाली और चारागाह है यहाँ इस ओर और उस ओर। और उसे तो वहाँ पर जाना होता था जहाँ पर उसको अगुआ और जुआ लेकर गया। ओह, आज रात यदि हम ब्रैनम टैबरनेकल की नाई केवल कैदी बन सकते हैं, जो हमारे खुद के स्वार्थ हैं, जो हमारे खुद की आकांक्षा है, जिसे हम खुद को पूरी तरह से समर्पित कर सकें और उसके साथ जुए में जुट जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बाकी का संसार क्या सोचता है, बाकी का संसार क्या करता है। हम उसके प्रेम के बंधन के अंदर जुए में जुट गए हैं, हम कैदी हैं। मेरे पैर मसीह के साथ इतने जुए में जुट गए हैं कि यह नाचना नहीं चाहेंगे। मेरी आंखें मसीह के साथ इतने जुए में जुट गई हैं, इतना तक कि मैं जब मैं इस आधुनिक नग्न नृत्य करने वालों को रास्तों पर देखता हूँ, यह मेरे सिर को घुमा देता है। मेरा हृदय उसके प्रेम में इतना जुए में जुट गया है, इतना तक कि मेरे पास इस संसार के लिए कुछ भी प्रेम नहीं हो सकता है। मेरी इच्छाएं उसके साथ इतनी जुए में जुट गई हैं, इतना तक कि मैं अब जानता भी नहीं कि मेरी आकांक्षा क्या है। केवल जहां कहीं भी पूजे आप चलाएंगे प्रभु, मैं वहां जाऊंगा, मैं कैदी बनूंगा, समझे? पौलुस सही रूप से कैदी था, वो कोई गलत बयान को नहीं दे रहा था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से प्रशिक्षित किया गया था ताकि उस वचन पर रुका रहे। अब वह एक तरह से प्रशिक्षित किया हुआ था, लेकिन अब परमेश्वर ने उसे किसी और तरीके से प्रशिक्षित किया था। वह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था ताकि प्रभु के लिए रुका रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी आकांक्षाएं क्या थी। अब मैं पवित्र आत्मा की सहायता से आपको कुछ तो दिखाऊंगा, समझे? अब आइए एक घटना को लेते हैं। एक दिन पौलुस और सिलास किसी शहर से होते हुए रास्ते पर आ रहे थे, जहाँ पर उन्होंने एक बेदारी को रखा था और एक छोटी दुष्ट आत्मा से भरी हुई लड़की उसके पीछे पीछे आ रही थी और उसके पीछे से चिल्ला रही थी। और इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पौलुस जान गया था कि वो एक प्रेरित होने की नाई, उसके पास अधिकार है कि उस दुष्ट आत्मा को जो उस स्त्री के अंदर थी उसे डांटे। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, वह प्रतिदिन रुका रहा जब तक कि अचानक ही पवित्र आत्मा ने उससे बात की और कहा, यही वो समय है। तब उसने कहा, तू आत्मा उसमें से बाहर आ जा। देखा, वह प्रभु पर रुका हुआ था। और वहाँ पर बहुत से आज लोग हैं जो वचन के निमित्त निंदा को लाते हैं, वे एक आकांक्षा के साथ बाहर जाते हैं। वहाँ पर कितनी सारी बेदारियाँ ठंडी हो गई हैं, क्योंकि ऐसी कुछ बातें हैं, क्योंकि वह सुसमाचारक उस बात पर रुके नहीं रहते हैं कि प्रभु क्या कहना चाहता है। उसमें से कुछ कहते हैं यहाँ पर आओ, और वे अब सीधा वहाँ चले जाते हैं क्योंकि सहयोगी ने कहा जाओ। और पवित्र आत्मा कुछ तो अलग ही कहता है, फिर भी मनुष्य की आकांक्षा कोई राजकीय पुरोहित बनना है, या कुछ तो और बनना, या कोई प्राचीन बनना, या कोई बिशप, या ऐसा ही कुछ जो उसे खींचे। तुम्हें जाना ही होगा, और फिर भी वो अच्छी तरह से जानता है। पवित्र आत्मा कहता है यहाँ पर जाओ, समझे? वह उसके संस्था के साथ जुए में जुटा हुआ है। वह एक संस्था का कैदी है, लेकिन यदि वह एक मसीह के साथ जुए में जुटा हुआ है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा चलेगा, समझे? वह जुए में जुटा हुआ है, एक कैदी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कहता है, यह एक ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। वह केवल परमेश्वर की आवाज को सुनता है, और वह केवल वही बोलता है। जब ये उसमें से बाहर आती है, वह कुछ और नहीं बोलता है। कोई तो कहता है ओ भाई जॉन्स, भाई रॉबर्ट, या जो कोई भी वो बड़ा व्यक्ति आज हमारे देश में आया है, जैसे टॉमी हिक्स या ओरल रॉबर्ट्स या भाई टॉमी ऑसबर्न, इसमें से कोई बड़ा सुसमाचारक। यदि कोई कहेगा तुम यहाँ पर बोलने के लिए आओ टॉमी, तुम परमेश्वर के एक महान व्यक्ति हो, या जुबानी तौर से, और एक मेरे अंकल हैं जो वहाँ पर रहते हैं, जो पूरी तरह से जकड़े हुए हैं और वह बीमार है, मैं चाहता हूँ आप वहाँ पर आए, मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारे पास उसे चंगा करने की शक्ति है, समझे? और हो सकता है पवित्र आत्मा उससे कहेगा अभी नहीं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के साथ मित्रता होने के कारण वह उसके साथ जाने के लिए कार्यबद्ध है। यदि वह नहीं जाता है, वह उस व्यक्ति का शत्रु बन जाता है। वह मनुष्य कहेगा तो ठीक है, वो वहाँ फलाना फलाना जगह पर उस बालक को या उस लड़के को चंगा करने के लिए गया था, मैं जानता हूँ उसने किया है, और मैं उसका वर्षों से मित्र रहा हूँ, देखा वह मेरे स्थान पर नहीं आया। लेकिन यदि उसे वहाँ नहीं जाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा विवश किया गया है, अच्छा होगा कि वह न जाए, यदि वह परमेश्वर के जुए में जुटा हुआ है तो। उसका मित्र उसका प्रेमी है, लेकिन उसके लिए बेहतर होगा कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही वहाँ पर जाए, क्योंकि इससे किसी भी तरह से कुछ भी भला नहीं होगा। मैंने इसका बहुत सी बार अनुभव किया है। लेकिन पौलुस केवल पवित्र आत्मा के लिए रुका रहा, ताकि उसे बताया कि क्या करना है। कहा पवित्र आत्मा पर रुके रहो। वो एक रात भर प्रचार करने के लिए खड़ा रहा, और वो वहाँ से चलकर बाहर आया। उसने एक लंगड़े व्यक्ति को देखा, और उसी वक्त पवित्र आत्मा ने उससे बातें की और कहा मैं जान गया हूँ। कैसे? उसी तरह से वो जान गया कि वे उस टापू के ऊपर नष्ट होने वाले थे, समझे? मैं जान गया हूँ कि तेरे पास चंगाई पाने के लिए विश्वास है, अपने पैरों पर खड़ा हो जा, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है। देखा आप वहीं पर हैं, वह जुए में जूता हुआ था। हो सकता है उसने वहाँ पर एक हफ्ते की बेदारी को रखा हो और कुछ भी घटित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा के बोलने के लिए वह रुका हुआ था, समझे? वह उस संकेत के लिए जुए में जूता हुआ था। अब आप कहेंगे भाई ब्रैनम आप उस बात को गलत ठहरा रहे हैं जो आपने रविवार को कही, उस विषय के लिए आप बहुत समय से रुके हुए थे, और लेकिन आपको याद है ये पवित्र आत्मा था जिसने मुझसे वहाँ उस रास्ते पर बात की और कहा मैं तुम्हें वापस उस बीमारों के लिए और पीड़ित लोगों के बीच में बेच रहा हूँ। देखा ये पवित्र आत्मा के निमित्त आगे में रहना है। निश्चय ही मैं तब तक नहीं गया जब तक उसने मुझे इसे करने के लिए नहीं कहा। मैं युवा योग्यता वाले वचन के लिए तब तक रुका हुआ था जब तक वो युवा योग्यता वाला वचन मेरे पास नहीं था। अब यही वो भिन्न बात है, समझे? अब यह इस एक बात को भिन्न बनाती है। जी हाँ, वह प्रभु के वचन के लिए रुका रहता, वह आत्मा में आगे बढ़ता था जिससे कि वह परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता रहे, तब वो एक यीशु मसीह का कैदी बन गया था। दोस्तों, अगर हम केवल उसी के कैदी बन सकते हैं तो मैं जानता हूँ ये गर्मी है, लेकिन मैं कुछ और पात्रों के नाम को लूंगा। यदि आप कहें तो मैंने यहाँ लगभग 6 और 8 पात्रों को लिख कर रखा है, लेकिन मैं बस और 2 ही पात्रों के नाम को लूंगा। आइए मूसा के चरित्र को लेंगे। उसका एक छुटकारा देने वाला होकर जन्म हुआ था, और वह यह जान गया था कि उसका एक छुड़ाने वाला होकर जन्म हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं मूसा के बारे में कहूँ, मैं इस बयान को देना चाहता हूँ कि परमेश्वर किसी एक ऐसे मनुष्य को लेता है जो सच्चाई से उसकी सेवा करे, उसका एक कैदी बने। एक मनुष्य उसके हर एक आकांक्षा को जो उसके पास है, वो जो कुछ भी है, हर एक चीज, उसका जीवन, प्राण, शरीर, उसकी इच्छा, आकांक्षा और जो कुछ भी वो है, और वो एक पूरी तरह से मसीह का एक कैदी बनता है उस वचन का, ताकि वो परमेश्वर की सेवा करे। हो सकता है आपको अपने उत्तम विचारों के विपरीत चलना होगा। हो सकता है किसी एक फलाना संप्रदाय में, हो सकता है आप सोचते हो कि वे आपको ऊपर उठाएंगे और आपको कुछ तो बड़े काम को देंगे जिससे कि आप चमक सकें। लेकिन आप अपने आप में क्या पाते हैं? आप अपने आप को कुछ समय के बाद एक हारा हुआ पाते हैं, जब तक परमेश्वर एक मनुष्य को नहीं ले लेता जो उसके लिए एक कैदी बनना चाहता है। परमेश्वर कैदियों के लिए देख रहा है, उसने हमेशा ही ऐसा किया है। आप वचन में से होकर देख सकते हैं, एक मनुष्य को मसीह के लिए कैदी बनना है, किसी भी चीज के विपरीत। इसलिए आप मसीह को छोड़ और किसी चीज के साथ जुड़े नहीं होना है, यहाँ तक कि आपके पिता से, आपकी माता, आपके भाई, आपकी बहन, आपका पति, आपकी पत्नी, कोई भी होने दो। आप केवल मसीह के साथ जुड़े हुए हैं और केवल उसी के साथ, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। बाहर जाकर कभी कभी लोगों से कड़क बात करना होता है, समझे? मैं आपको छुड़ाने के लिए यत्न कर रहा हूँ। आपके पास एक आरंभिक स्थान होना चाहिए, जैसे कभी कभी हम स्त्रियों को उनके कटे हुए छोटे बालों के लिए और छोटे कपड़ों को पहनने के विषय में बताते हैं और अपने मसीहत आचरण के अंदर बने रहने और बनाए रखने के लिए बताते हैं। वे कहते हैं ये छोटी छोटी बातें हैं, तो ठीक है, आपको कहीं से तो शुरुआत करना होगा, तो ठीक वहीं से आरंभ करें, अपनी क ख ग के साथ, समझे? और किसी भी तरह दुनियादारी के लोगों के जैसे दिखने से आपको स्वतंत्र होना है और मसीह का एक कैदी बनना है, और उसके बाद केवल उसी पर आगे बढ़ना है, हर एक चीज को निकालना है, जब तक कि अतः वो आखिरी रेखा निकल नहीं जाती, तब आप उसके बाद एक कैदी बनते हैं, आप उसके गिरफ्त में आ जाते हैं और वह आपको उसकी गिरफ्त में ले लेता है। अब मूसा जानता था कि उसका एक छुड़ाने वाला होकर जन्म हुआ था, वह यह जानता था। और क्या आपने ध्यान दिया जो आकांक्षा मूसा के पास थी, जानते हुए वहाँ पर उसकी माता ने उसे बताया था कि वह उसकी दाई थी? कोई संदेह नहीं, जब मूसा वो छोटा बालक जन्मा था, वो उसकी माँ ने कहा, तुम जानते हो मूसा, जब तुम्हारे पिता अमराम ने और मैंने निरंतर प्रार्थना की थी, हम जानते थे और वचन में देखा, यह वही समय था जब एक छुड़ाने वाले को आना था और हमने प्रार्थना की, प्रभु परमेश्वर हम एक छुड़ाने वाले को देखना चाहते हैं। एक रात प्रभु ने हमसे उस दर्शन में कहा कि तुम्हारा जन्म होगा और तुम एक छुड़ाने वाले बनोगे। हम उस राजा की आज्ञाओं से नहीं डरे थे, हमने परवाह नहीं की कि राजा ने क्या कहा, तब हम जान गए कि तुम्हारा जन्म एक छुड़ाने वाले की नाई होना था। अब मूसा, हम जानते हैं कि हम तुम्हें सही रीति से ऊपर नहीं ला सकते हैं। अब याद रखना, वे वहाँ पर 400 वर्ष से मिस्र में थे, समझे? और हम तुम्हें सही चीज को देना चाहते थे, सही शिक्षा, सही प्रशिक्षण, इसलिए हमने तुम्हें लेकर और एक छोटी सी नाव में रख दिया और तुम्हें नील नदी के अंदर रख दिया। और कितनी अजीब बात है कि वो पानी का बहाव सरकंडों में से होते हुए और तेजी के बहाव में से होते हुए सीधे उस छोटी नाव को वहाँ नीचे लेकर गई, मिलो दूर, और मुड़कर उस फिरौन के महल के अंदर चली गई, जहाँ पर वो फिरौन की बेटी थी, जहाँ पर उसका नहाने का तालाब था। और ऐसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें पालने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी, और उन दिनों में निश्चय ही उनके पास बच्चों को बढ़ाने के लिए उनके पास बोतलें नहीं होती थी, और इसलिए उसे दूध पिलाने वाली दाई होना था, इसलिए। और मरियम को मैंने वहाँ पर भेजा और वो वहाँ पर खड़ी थी और उसने कहा, मैं जानती हूँ मुझे वो दूध पिलाने वाली दाई कहाँ पर मिल सकती है, और वो आकर मुझे वहाँ पर लेकर गई। और मूसा, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, प्रिय अब तुम 16 वर्ष के हो और तुम फिरौन के पुत्र होने जा रहे हो, और किसी दिन तुम एक छुड़ाने वाले होंगे जिसे लोगों को यहाँ से बाहर निकालना है। मूसा की आकांक्षाओं ने बढ़ना आरंभ किया, मैं पढ़ूंगा माँ, मैं वो हर एक चीज पढ़ूंगा जिसे मैं पढ़ सकता हूँ, तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगा, मैं अध्ययन करूँगा किस तरह से एक सेना का आदमी बनना है, और मैं जान जाऊंगा इन लोगों को यहाँ से कैसे बाहर निकालना है, मैं एक बड़ा जनरल बिशप बनूंगा इसलिए कि मैं जान जाऊं कि इसे कैसे किया जाना है, और मैं इसे बाहर निकालूंगा, और मैं अपनी PhD और LL की उपाधि लूंगा और मैं इसे कर लूंगा। जैसे फादर चिंकियू, यदि आपने कभी उसकी किताबों को पढ़ा है तो ठीक है, वह सारे प्रोटेस्टेंट को छुड़ाने जा रहा है, आप जानते हैं वही वो एक होगा खुद। सो ये याजक वर्षों पहले फादर चिंकियू आपको उसकी किताब को लेकर इसे पढ़ना चाहिए। वो उसे फादर बुलाते हैं, वह बस एक भाई चिंकियू है जो ऐसा ही था। हम किसी मनुष्य को फादर ऐसे नहीं बुलाते हैं। सो हम देखते हैं वो बाइबल को बताने जा रहा था, इसलिए कि वो वहाँ पर आकर और प्रोटेस्टेंट धर्म को गलत घोषित करके और इन सबको कैथोलिक बना सके। और जब वो बाइबल को बताने के लिए गया और पवित्र आत्मा उस पर आया और उसे पवित्र आत्मा मिला और तब वह उसमें से एक बन गया। इसलिए तब आप इसे ध्यान दें, मूसा को सारा प्रशिक्षण मिला था, इसलिए वह जान गया था। वह बहुत ही चतुर व्यक्ति था, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही बुद्धिमान, इतना तक कि कोई भी वो मिस्त्रियों को भी सिखा सकता था, इतना तक कि वो मनोवैज्ञानिकों को भी सिखा सकता था और वो उनके जनरल लोगों को भी सिखा सकता था और जो उनके सेना में रहे होंगे। वह एक महान व्यक्ति था और लोग मूसा से डरते थे क्योंकि उसकी महानता की वजह से। ओह क्या ही एक विद्या थी। ओह वह एक आर्क बिशप था, यह हो सकता है जैसे एक पोप। वह एक बड़ा व्यक्ति था और वो एक शूरवीर मनुष्य था और वह जान गया था कि उसने इसे करने के लिए जन्म लिया है और प्रशिक्षण हुआ था। वो इसे करने के लिए उसकी बड़ी आकांक्षा के साथ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज है। मैं ये नहीं कहता कि वे मनुष्य जो इन विद्यालयों में प्रशिक्षण ले रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि जैसे कि वे जो बाहर या अब पश्चिम में हैं, वे 15 करोड़ डॉलर का धर्म शिक्षा का विद्यालय बनाने जा रहे हैं। देखो जो पेंटिकॉस्टल का 15 करोड़ डॉलर का विद्यालय होगा, मेरे लिए इसे कार्य क्षेत्र में मिशनरी होना चाहिए। समझे समझे, देखा। लेकिन जो भी है, वे क्या करने के लिए करते हैं जब वे वहाँ से बाहर आते हैं, वे क्या होते हैं? आवारागर्दी करने वालों का झुंड, बिल्कुल ठीक वैसे ही है। और फिर इसी तरह से वे बाहर आते हैं, ये हमेशा से ही ऐसे हैं। और उनमें से बाकी के जो हैं और वे भी उसी तरह की राह में हैं, देखा। अब हम यह देखते हैं कि जब मूसा उसके सारे प्रशिक्षण में था और आज उनके सारे प्रशिक्षण बड़े बड़े बिशप और इत्यादि को तैयार कर रहे हैं, वह महान बड़ी आकांक्षा, हम क्या करेंगे? हमारी आकांक्षाएं लगभग बिल्कुल वैसे ही बनती हैं जैसे मूसा की थी, समझे। इससे पहले परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने हाथ में ले, उसे अपनी सारी आकांक्षा को निकाल फेंकना था, उसे उसके सारे प्रशिक्षण को निकाल फेंकना था, उसे वहाँ पर जाना था और उसे छुटकारा देना था। उसने एक मिस्त्री की हत्या कर दी और वह जब उसने ऐसा किया, उसने पाया कि उसने गलत किया था, वो ऐसा नहीं कर पाया था, यह वो तरीका नहीं था। और परमेश्वर को उसे बाहर निकालकर और जंगल के अंदर लाना था, उस रेगिस्तान में, एक रेगिस्तान के स्थान पर। आप ध्यान देना, एक अजीब सी बात है, कैसे वे लोग जिनके लिए परमेश्वर के पास एक संदेश है, वह उन्हें एक रेगिस्तान के अंदर ले जाता है। परमेश्वर पौलुस को रेगिस्तान में ले गया ताकि उसका प्रशिक्षण करे, उसे बताए कि वह सारा महान दर्शन क्या था। वहाँ उस रेगिस्तान के अंदर, उस एक फलाना रेगिस्तान के अंदर चले जाओ, और वह वहाँ पर रुका रहा जब तक परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से नहीं बताया कि क्या करना है। और मूसा के समय में वो उसे वहाँ रेगिस्तान में ले गया, वहाँ उसे 40 वर्षों तक रखा और उसकी सारी धर्म शिक्षा और उसकी सारी आकांक्षा को निकाल फेंका। ओह ये क्या ही एक समय है कि वह पीछे मुड़कर देख सकता है और उसकी विफलता को देख सकता है। और किस तरह से हमें आज रात उसी बात को करना चाहिए जब हम हमारी आकांक्षा को देखते हैं, उस चंगाई की स्वभाव की ओर देखें। और देखो यदि प्रभु ने कुछ वर्ष पहले कुछ तो किया है, वो बीमारों के लिए चंगाई को लौटाना आरंभ कर रहा है और इत्यादि। हर एक जन, हर एक संस्था, क्योंकि ये उनकी संस्था में नहीं आया, उन्हें उनके लिए एक चंगाई देने वाला चाहिए था। और हमने क्या किया है, आइए केवल कुछ समय के लिए इसे देखेंगे। हमने उसी चीज को किया है जो मूसा ने की थी, हमने बाहर जाकर और बहुत ही कोशिश की है कि किसी प्रकार के चिन्ह चमत्कारों को निर्माण करें। मैंने एक बीमारी को निकाला, मेरे हाथ में वो लहू है और एक चमत्कार का निर्माण करते हैं, समझे। और हमें क्या मिलता है, कुछ लोग के पास इतना ज्यादा तनाव होता है, वे टूटकर और रोज शराब पीते हैं, पागल और दिमाग में असर हो जाता है, और वे वापस बहुत पीछे चले जाते हैं जिससे कि पेंटिकॉस्टल की बातों को ले सके, फिर से संस्थाओं और इत्यादि चीजों को बना रहे हैं। देखा हमने क्या किया है, लगभग एक मिस्त्री को मारा है, यह सही बात है। और हमने कोशिश की है हमने तनाव लिया है, हमने भरपाई की है, हमने परिश्रम किया है, हम पूरी रात भर की लंबी प्रार्थना की सभा में जाकर यहाँ तक कि हमने अपनी आवाज को भी गवा दिया है। और कुछ तो निर्माण करने की कोशिश करते हैं और कुछ तो शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इस तरह की सारी चीजों को करते हैं और हम इसे पूरी तरह से विफल होते हुए दिखाई देते हैं। हमें उस रेगिस्तान में वापस जाने की आवश्यकता है। सही है? जी हाँ श्रीमान, कोशिश करते हैं और संघर्ष करते हैं, हम बस इसे छोड़ क्यों नहीं देते? यही है जो तुम्हें करना चाहिए। देखो, वापस जाएं और इसे करना छोड़ दें, क्योंकि हमने उन्हीं बातों को किया है जो उन्होंने की है, उसी बातों को मूसा ने किया। इससे कुछ भी लाभ नहीं है। 40 वर्षों के बाद उसने खुद को परमेश्वर के वचन का एक कैदी पाया। हम क्या करने की कोशिश करते हैं जब वो महान आशीष बाहर आती है और इन सारी महान बातों का प्रकटीकरण जिसके बारे में परमेश्वर ने हमें बताया, कैसे हमें फिर से नया जन्म लेना अवश्य है और हमें कैसे पवित्र आत्मा को पाना अवश्य है, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है और ये सारी बातें जो यहाँ पर है। आप देखो, लोग उस वचन में बने रहने की बजाय इसके जुए में जुट गए हैं। वे क्या करने के लिए करते हैं? उन्होंने अपनी खुद की संस्थाओं की धर्म शिक्षा को आरंभ किया है जो पहले से विफल हो चुकी थी, और कुछ तो बनाने की कोशिश करते हैं जो सच्चाई के जैसे दिखाई देती है। अच्छा होगा कि मैं इसे यहीं पर छोड़ दूं। देखा, मुझे पक्का है आपके पास इतनी समझ है कि यह जाने मेरा अर्थ क्या है, समझे? लेकिन क्योंकि देखो इसने क्या किया है, इस पर सोचें। हमारे पास आज रात क्या है सिवाय एक संस्थापक लोगों से भरे हुए राष्ट्र के, जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को इनकार किया है, जो पवित्र आत्मा के जीवन को कहते हैं कि यह एक मानसिक विचारधारा थी जो ऐसे लोगों को उनकी कलीसिया में आने से मना करते हैं। वे कभी भी आपको सर्प के बीज के एक शब्द को बताने की अनुमति नहीं देंगे। अनंत सुरक्षा और वे बातें जिसे पवित्र आत्मा ने प्रकट की है और वचन होने के लिए साबित की है, मैं चुनौती की बात चुनौती को देता हूँ कि आकर बताएं और मुझे गलत साबित करें। उनके पास क्या है? वही चीज जो लूथर के पास थी और जो उन बाकी लोगों के पास। देखो, एक मिस्त्री को मारना है। क्या यह क्या था? हो सकता है उसने किसी व्यक्ति को चोरी करना बंद करवाया हो, या हो सकता है वो अपने पत्नी के प्रति सच्चा बन गया हो। लेकिन उस बात से आपने उसे क्या बनाया? एक कलीसिया का सदस्य। आकर और हमारे झुंड से जुड़ जाओ। देखा, वो दुर्गंध युक्त मरा हुआ व्यक्ति ही केवल वो चीज है जिसकी ओर वो उसकी उंगली को दिखा सकता है, जो उसकी सफलता है, जो 40 वर्ष का प्रशिक्षण है। एक दुर्गंध युक्त मिस्त्री वहाँ पर पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है और मर गया है। इस विषय में आज रात भी उसी तरह से है। केवल एक ही चीज की ओर हम इशारा कर सकते हैं, जो सफलतापूर्वक बेदारी है, कहलाने वाली बेदारी। यह एक दुर्गंध युक्त कलीसिया के सदस्यों का झुंड है जो परमेश्वर के बारे में इतना अधिक नहीं जानते हैं जितना वे एक पोटेटोंट मिस्त्रियों की रात के बारे में जानते होंगे। ये सही है, यही है। उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं। वे कहेंगे, मैं इसे विश्वास नहीं करता हूँ। कहेंगे, मैं परवाह नहीं करता हूँ। तुम क्या कहते हो? मैं इसे विश्वास नहीं करता हूँ। समझे? समझे? ऐसा ही करना वो एक सबसे खराब बात है। उन बातों को दिखाना कि वो सारा जोर लगाना और संघर्ष करना जो कुछ भी हमने किया है। हो सकता है हम एक बड़े विद्यालय की ओर इशारा कर सकते हैं, लेकिन यह मरा हुआ है। हम एक संस्था की ओर इशारा कर सकते हैं, लेकिन यह मरी हुई है। इसमें से दुर्गंध आती है। ये तो केवल पहली चीज के जैसे है जिसमें से हम बाहर निकाले गए, जैसे कि एक सुअर का कीचड़ के अंदर जाना और कुत्ता अपनी छाछ को चाटता है। जब हम वापस जाते हैं, एक मरा हुआ मिस्त्री। कोई संदेह नहीं, लेकिन किसी ने कहा, मूसा, क्या तुम्हारे पास लोगों के लिए कोई एहसास नहीं है? तुम इसे करने के लिए बुलाया गया है। कोई तो जो मूसा को जानता था और जानता था उसे ये करने के लिए बुलाया गया है। क्या तुम लोगों के प्रति अनुभूति को खो चुके हो? नहीं श्रीमान। तो क्यों, तो वहाँ पर बाहर जाकर इसे क्यों नहीं करते हो, और तुम यहाँ जाकर इसे कोशिश क्यों नहीं करते हो, और तुम बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं जाते हो? मूसा ने वहाँ पर हर एक बात को निकाल फेंका था जब तक उस जलती हुई झाड़ियों पर उसके पास एक अनुभव नहीं था जो वचन को घोषित करता है, मैं अब्राहम का, इजाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, और मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद है, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए नीचे उतर कर आया हूँ, मैं तुम्हें इसे करने के लिए भेजता हूँ। यह क्या था? उसने वचन को देखा था, न ही लोगों की आकांक्षा को या लोगों की इच्छाओं को। तब वो क्या बन गया? वह मिस्त्रियों के सामने और नहीं आना चाहता था, वह इन बातों का सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन वह कैदी बन गया। आमीन। 40वां वर्ष चल रहा था, वह सब कुछ उसमें से निकाल फेंक रहा था, लेकिन बाद में वह कैदी बन गया उस जलती हुई झाड़ियों पर वो शक्तिशाली मूसा जो उसके सारे बुद्धिमता के साथ था। बाइबल कहती है कि वहाँ मिस्र में मूसा शब्दों में कार्य में शक्तिशाली मनुष्य था, लेकिन ध्यान देना, शक्तिशाली धर्मज्ञानी ने उस जलती हुई झाड़ियों की उपस्थिति में क्या किया? उसने केवल उसकी अयोग्यता को स्वीकार किया। जब उसने परमेश्वर के सच्चे उद्देश्य को देखा, उसने इसे करने के लिए उसकी अयोग्यता को स्वीकार किया। फिर भी वो सारे धर्म ज्ञान से प्रशिक्षित था जो वे उसे दे सके थे, उनके सबसे अच्छे विद्यालयों में प्रशिक्षित था, लेकिन फिर भी वह क्या कर सका? उसने अग्नि के स्तंभ को जलती हुई झाड़ियों पर मंडराते हुए देखा, कहा, यहाँ तक मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ, प्रभु मैं कौन हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊँ? देखा, अपने जूतों को उतारो मूसा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अपने आप को उतार फेंको, यहाँ तक तुम्हारे जूते भी, तुम फिर से जमीन पर आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ तक वो बात भी नहीं कर पा रहा था। अतः एक चुना हुआ कैदी बिल्कुल वैसे ही जैसे पौलुस चुना हुआ था, मूसा चुना हुआ था छुड़ाने वाला, और बाद में अतः परमेश्वर का उसका चुना हुआ अधीन उसके लिए कैदी। ओह हालेलुया, वह तभी चल सकता है जब परमेश्वर उसे चलाता है। मैं उसे क्या कहूँगा कि किसने मुझे भेजा है? मैं हूँ, मैं इसे कैसे करूँगा? मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी हाँ प्रभु, जैसे आप कहें मैं यहाँ पर हूँ। ओह प्रभु, यही है, वह उसका एक कैदी है। वह उसके श्रेष्ठ विचारों के विरोध में चला गया। अब उसे अपनी एक सेना का कार्य आदेश देने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। तलवारों को उठाओ, सामने देखो, आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षित, वे रथ सब कतार में हो जाएं, भाले आगे की ओर, हमला। इसी तरह से वो उसे लेने जा रहा था, यही उसका प्रशिक्षण था। लेकिन उसने कहा, मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा? कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? एक लकड़ी। परमेश्वर ऐसी कुछ चीजों को करता है मनुष्य के दिमाग के लिए कभी कभी हास्यास्पद होती है, समझे? अपने हाथ में एक लकड़ी लिए हुए नीचे लटकती हुई दाढ़ी 80 साल का बूढ़ा, उसकी पत्नी एक खच्चर पर बैठी हुई थी और बच्चा उसकी गोद में बैठा था, छोटे कोमल हाथ नीचे की ओर लटकते हुए एक लकड़ी, केवल उसका सिर ऊपर की ओर उठा हुआ था, क्योंकि उसके पास यहोवा यह कहता वाला वचन था। क्यों? वह अतः उसके साथ जुड़ गया था। वह एक कैदी था, मैं केवल तभी आगे बढ़ूंगा जब वो मुझे आगे बढ़ाता है, मैं केवल तभी बोलूंगा जहाँ पर वचन बोलता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास एक कार्य आदेश है, फिरौन के सामने खड़े होकर और उसे इस छड़ी के द्वारा दिखाऊं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, आमीन। तुम इसके बाद क्या करोगे? मेरे से करने के बाद वह अगली चीज का प्रयोजन करेगा। आप वहीं पर हैं, आपके पास करने के लिए केवल एक ही चीज है, वह पहला कदम आज रात को समर्पित करें, एक कैदी बन जाएं। अपने बारे में मत सोचो या किसी और चीज के बारे में, एक कैदी बन जाएं। मूसा एक कैदी बन गया, उसने स्वीकार किया, वो तो बात भी नहीं कर पा रहा था। अतः जब परमेश्वर ने उसे अपने हाथों में ले लिया, वो केवल वहीं पर आगे बढ़ सकता है जहाँ परमेश्वर उसे आगे बढ़ाता है, जहाँ उसने उसे वचन को बताया। वह जानता था कि यह वचन था, उसके बाद उसने अपने आप को वचन के लिए सौंप दिया और पवित्र आत्मा वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर की इच्छा से जुए में जोत दिया। बिल्कुल इसी बात को उसने पौलुस के लिए किया, क्या यह सही है? उसने पौलुस को जुए में जोत दिया। छोटा सा मुड़ी हुई नाक कटु यहूदी जो PhD और LLB की उपाधि से वह पूरी तरह से लदा हुआ था, लेकिन उसने कहा, मैं उसे दिखाऊंगा कि उसे वचन के कारण किन बातों को सहना होगा, समझे? और वह और तब पौलुस वहाँ पर बैठा हुआ और वचन को देख रहा था, और वह यह देख रहा था कि वो यीशु था। तब उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और वह उससे जुए में जुट गया। परमेश्वर के प्रेम ने वचन के साथ जुए में जोत दिया, वह अन्य जातियों के सामने मेरे नाम की गवाही देगा। वह वहाँ पर चला गया। मूसा, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मुझे याद है मैंने उनसे प्रतिज्ञा की थी, और प्रतिज्ञा का समय नजदीक आ गया है, और मैं अपने लोगों की पीड़ाओं को देख रहा हूँ। मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद है, और मैं तुम्हें लेने के लिए नीचे उतर आया हूँ ताकि तुम्हें जुए में जोत दूँ। तुम्हें पता है कि वचन क्या कहता है, मैं तुम्हें वहाँ जाने के लिए जुए में जोत देता हूँ, तुम्हें सामर्थ के साथ जुए में जोत देता हूँ ताकि तुम वहाँ जाकर और मेरे लोगों को छुड़ाओ, और इस छड़ी को एक गवाही के रूप में अपने हाथों में लेना, क्योंकि तुमने इसके द्वारा किए हुए चमत्कार को देखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दाऊद के पास गुलेल था। देखा, खुद को जुए में जोत दिया और वह आगे निकल गया। अतः परमेश्वर के पास एक मनुष्य था जो उसके अधीन था, उसके साथ जुए में जुता हुआ था, और वह आगे नहीं बढ़ सका जब तक उसे परमेश्वर के वचन ने आगे नहीं बढ़ाया। यदि मनुष्य केवल आज इसी तरह से करे तो तब वह उसका कैदी था, एक प्रेम का कैदी जो उसके प्रेम की बंधुआई से परमेश्वर के साथ जुए में जुता हुआ था, जैसे पौलुस जुए में जुता हुआ था, परमेश्वर के प्रेम में बंधा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पौलुस। दोनों ने इसी तरह से प्रशिक्षण को लिया था। मूसा ने प्रशिक्षण को लिया, आप जानते हैं, ताकि इसराइल के बच्चों को बड़ी सेना के द्वारा छुड़ाएं। पौलुस को प्रशिक्षण मिला था ताकि उन्हें रोमन के हाथों से छुड़ाकर और उन्हें स्वतंत्रता के अंदर रख दे, जो उस दिन पर संसार की बड़ी संप्रदाय ताकत थी। बड़े विद्यालयों का प्रशिक्षण जो गमलियल की देखरेख में आता था, और दोनों जन रेगिस्तान के अंदर चले गए थे और बाहर एक अलग ही मनुष्य बनकर निकले। दोनों ने अग्नि के स्तंभ को देखा था और दोनों ही भविष्यवक्ता थे। क्या यह सही बात है? वे दोनों भविष्यवक्ता थे और दोनों ही अग्नि के स्तंभ के द्वारा बात किए गए थे। यह बिल्कुल सही है जो एक छुड़ाए जाने के लिए आया था। वे वहाँ पर थे, एक रेगिस्तान के अंदर चले गए, अपने घरों को छोड़ दिया और रेगिस्तान में चले गए इसे पाने के लिए। अपने लोगों को और सारी चीजों को उन्होंने छोड़ दिया ताकि परमेश्वर की इच्छा को जाने, समझे। वे एक तरीके से प्रशिक्षित हुए थे, परमेश्वर ने उन्हें दूसरे तरीके में बदल दिया और वो पूरी तरह से एक कैदी बन गए थे, ताकि वे इस तरह के कार्य को न करें जिस तरह से वो कार्य करना चाहते थे, लेकिन उस तरह के कार्य को करें जो परमेश्वर उन्हें कार्य को करवाना चाहता था। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या हमारे पास इसे करने के लिए 10 मिनट और है? मैं जल्दी से एक और पात्र को लूंगा। अब मैं अपने सामने एक और को देखता हूँ जिसका नाम यूसुफ था। वह एक चुना हुआ पुत्र था। वह यीशु मसीह का एक सिद्ध प्रतिरूप था। उसने एक भविष्यवक्ता करके जन्म लिया था। वह एक भविष्यवक्ता भी था, समझे। और अब वो दर्शन को देख सकता था, और जब वह छोटा लड़का ही था, उसने खुद को एक सिंहासन पर बैठे हुए देखा और उसके भाई लोग उसके सामने झुक रहे थे, समझे। लेकिन ध्यान देना, वह उसने खुद को एक बड़ा व्यक्ति करके अनुभव किया था, समझे, ये सब। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया होगा? उसने उसी चीज को किया जो उसने बाकी लोगों के साथ की थी, क्योंकि मूसा एक छुड़ाने वाला था, पौलुस एक छुड़ाने वाला था, और अब यूसुफ एक छुड़ाने वाला था। उसने उसके लोगों को अकाल से बचाया। परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया होगा? उसे कैद खाने में डाल दिया, उसे सीधा कैद खाने के अंदर डाल दिया। जी हाँ श्रीमान, याद रखें, वह उसके भाइयों के द्वारा बेचा गया था एक मिस्रियों को, और उन्होंने उसे एक पोतीपर को बेच दिया, और पोतीपर ने उसे कुछ तो स्वतंत्रता को दिया, और पहली बात आप जानते हैं जो उससे ले ली गई थी, और वो वहाँ कैद खाने में बैठा हुआ था, रो रहा था, परमेश्वर को इसे निकाल फेंकना था। अब ध्यान देना, लेकिन सारे समय में मैं विश्वास करता हूँ वह उस कैद खाने में उस दर्शन ने जो कहा वह उसे याद कर सकता था कि वह सिंहासन पर बैठने जा रहा है, और उसके भाई लोग उसके सामने झुकने वाले थे, क्योंकि वह जानता था उसका यह दान परमेश्वर की ओर से आया है, और वह जान गया कि यह पूरा होने जा रहा था। यदि केवल इसी बात को हम अपने मन में रख सकें और परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो अंतिम दिनों में उसके पास एक कलीसिया होने जा रही है, उसके पास कुछ लोग होने जा रहे हैं, और यह चीजें जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है वह उन्हें करने जा रहा है, उसने कहा वह करेगा, और हम उसी समय में जी रहे हैं, हम वहाँ पर ही हैं, वह केवल हमें लेने का यत्न कर रहा है ताकि हम अब उसके सच्चे कैदी बने, उसके साथ बंदी हो जाएं। आपने उस पुराने गीत को गाते हुए सुना होगा, और उसके बाद मैं परमेश्वर के साथ बंदी हो गया, मैं उसके साथ बंदी होना चाहता हूँ। अब यही है जहाँ मैंने इसके विषय में सोचा, परमेश्वर के साथ बंदी होना और कुछ भी नहीं। और केवल आप तभी बढ़ते हैं जब परमेश्वर आपको बढ़ने के लिए कहता है, और आप केवल तभी करते हैं जब परमेश्वर इसे करने के लिए कहता है। देखो, तब आप परमेश्वर के साथ बंदी हो जाते हैं। अब याद रखना, वह सोच रहा था, वह पूरी तरह से अपने आप में विफल भी हो गया था। जो कुछ भी वह जानता था, जो कुछ भी उसे समझता था, और हर एक चीज, वह पूरी तरह से विफल हो गया था। इसने काम नहीं किया, उसे एक ऐसी परिस्थिति के अंदर डाला गया जहां उसकी कोई भी नहीं सुनेगा। वह एक कैदी था, समझे। उसे एक ऐसी परिस्थिति के अंदर डाला गया था कि अविश्वासी लोग उसका विश्वास नहीं करेंगे। क्या आप समझे कि मेरा क्या अर्थ है? उसकी सेवकाई बेअसर हो गई थी। लोगों ने अपने मुंह को मोड़ लिया था। कैद खाने में वे उसकी ओर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। अब उसकी सेवकाई किस काम की है? हो सकता है वह कैद खानों की सलाखों के पीछे खड़े होकर और उन्हें प्रचार करता होगा। वे वहाँ से आगे रास्ते में निकल जाते होंगे। देखा, लेकिन वह एक कैदी बन गया और परमेश्वर ने उसे एक कैदी बनाए रखा जब तक कि पहिया ठीक से नहीं घूमने लगा था। कहा, यहाँ पर मेरा व्यक्ति है, महिमा हो, पूरी तरह से विफल। अतः परमेश्वर उसके कैद खाने में आ गया जैसे पौलुस के, जैसे उनमें के उन सारे बाकी लोगों के लिए आया। वह उसके पास आया और उसने उसके दान का इस्तेमाल किया जो उसने उसे दिया था ताकि उसे वहाँ से बाहर निकाले। यह सही बात है, उसने उसे कैद खाने से बाहर निकाला। उसने क्या किया? जैसे ही उसने उसे कैद खाने से बाहर निकाला, उसे राजा के द्वारा सामर्थ को दिया गया। उसका राजा, जिसके पास ही वो बैठा था, जिसके वो नीचे था, उसे कैद खाने से बाहर निकाला गया और सामर्थ को दिया गया। यहाँ तक कि जो कुछ भी वो कहता वह पूरा हुआ था। आमीन। उसके कैद खाने में निरंतर उसने उस बात को याद किया कि वह एक उद्देश्य के लिए जन्मा था। उसे एक राजा के पास बिठाया जाना था और बाकी के लोग उसके सामने घुटने टेकेंगे। उसके दर्शन ने उसे ऐसा बताया था। आमीन। लेकिन उसका दर्शन उसके सामने पूरी तरह से पूरा हो सका। वह एक राजा बन गया। उसे एक कैदी बनना था। आमीन। बाद में उसे एक राज्य करने वाला बनना था। और जब वह उसके कैद खाने से बाहर आया और परमेश्वर के वचन का वह कैदी बन गया था, जहाँ पर केवल वह वही कह सकता था जो परमेश्वर उसके मुंह में कहने के लिए डालता है, तब परमेश्वर उसमें से होकर आगे बढ़ा। ध्यान देना कि मूसा के पास उसकी खुद की इच्छा से फिरौन की राजकुमारी को बांधने की सामर्थ थी। यदि तुम इस पार से कहो हट जा, उसके पास फिरौन की राजकुमारी को बांधने की सामर्थ थी। चाहे वे डीकन हो, पुरोहित हो, या वे उस राज्य के प्रतिनिधि हो, या जो कुछ भी वे थे, उसने कहा मैं तुम्हें बांधता हूँ और वे बंध गए थे। ऐसा ही था, वह अपने खुद के शब्द के द्वारा यह कर सका और खुद की इच्छा से। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। ओह, मेरे पास लगभग बस 3 मिनट हैं, सो मैं अपने शब्दों पर बना रहूंगा। अब हम देखते हैं वह एक परमेश्वर का कैदी बन गया, एक संसार के कैद से। उसी तरह से पौलुस था, उसी तरह से मूसा उसकी खुद की सोच के एक कैद से एक परमेश्वर का कैदी बन गया। और जब वह बाहर आया, उसके पास परमेश्वर की सामर्थ थी। और उसने पौलुस को, जब मूसा के पास खुद के विचार थे, उसने परमेश्वर को इसे समर्पित कर दिया और इसे निकालकर फेंक दिया। वह मसीह के वचन का एक कैदी बन गया। केवल वहीं पर वो आगे बढ़ सकता था, जहां कहीं भी। आप कहते हैं मसीह, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, इसलिए वह एक मसीह का कैदी था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पौलुस था। याद रखना, वे सारे तीनों भविष्यवक्ता थे, समझे, और उन्हें खुद की सोच को निकाल फेंकना था जिससे कि वह उसकी इच्छा और परमेश्वर के मार्ग के लिए एक कैदी बन जाएं। तब हम याद करते हैं अब कि उसके पास बांधने की सामर्थ्य थी, उसके खुद के शब्द पर, उसके पास उसके खुद के शब्द पर खोलने की सामर्थ्य थी। वह कह सकता है मैं तुम्हें मेरे राजा के नाम में खोलता हूँ। आमीन। फिरौन ने यूसुफ को उसका पुत्र बनाया। मसीह जो उसके हैं, उसे प्रेम का कैदी बनाता है, उसका पुत्र बनाता है और उन्हें सामर्थ को देता है, वही चीज जो उसके पास थी। संत यूहन्ना 14:12 कहता है, वह जो मुझ पर विश्वास करता है, देखो जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी अधिक करेगा। अब मसीह के प्रेम के कैदी जो उसके राजा के द्वारा अधिकारी बने थे, वह मसीह है। आमीन। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा और अपने हृदय में संदेह न करे, लेकिन विश्वास करे, जो कुछ तुमने कहा है वह पूरा हो जाएगा और तुम्हारे पास होगा। जो तुमने कहा है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मेरे साथ जुए में जुते हुए हो, क्योंकि वो और उसका वचन एक है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। यदि तुम मुझ में बने रहो न ही यहाँ पर और वहाँ पर, मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांग लो या चाहे कहो यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके पास सामर्थ्य। ध्यान दें, इससे पहले कि वह बाहर आए उसे बाहर निकालकर और मुंडन किया जाना था और कुछ बातों का उसमें से मुंडन किया जाना था, इससे पहले वो उस राजा से मिले, समझे। ओह परमेश्वर कभी कभी उसके लोगों को इसी तरह से बाहर निकालता है और उनकी खुद की कुछ इच्छाओं को मुंडन करता है, उन्हें ये दिखाने के लिए कि वे जो भी करना चाहते थे वे नहीं कर सकते हैं। आप समझते हैं मेरा अर्थ क्या है, वे इसे करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे वे जो करना चाहते थे। इससे पहले वह पूर्व सामर्थ्य में आ सके और मसीह के एक प्रेम के कैदी बने, उन्हें मुंडन किया जाना था और उसके बाद आगे लाया जाना था। कभी कभी वह उन्हें रेगिस्तान में ले जाता है ताकि इसे करे और उन्हें पूरी तरह से मुंडन करता है और बाद में उन्हें वहाँ पर बाहर लाता है, उस एक को अभिषेक करता है जिससे कि उसके उद्देश्य को पूरा करे जिसके लिए उसने उन्हें करने के लिए ठहराया है। समझे मेरा क्या मतलब है। भाइयों हम अंत समय पर हैं। याद रखना, सारे दूसरे समयों में उसने ऐसा ही किया है, वो हमेशा ही एक मनुष्य को लेता था और उसे अपना एक कैदी बनाता था उसके खुद के लिए। उसे उसके खातिर जो कुछ भी वह जानता था उसे उसके सारे प्रशिक्षण और हर एक चीज को छोड़ना होता था जिससे कि वह परमेश्वर की इच्छा को जान जाए और परमेश्वर का अनुकरण करे। वो एक ही समय पर अनुकरण नहीं कर सकता है जो उस मनुष्य के पास करने के लिए होता है और परमेश्वर के पास होता है, यह पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत है। आप एक ही समय पर पूर्व व पश्चिम में नहीं जा सकते हैं, आप एक ही समय पर दाएं और बाएं नहीं जा सकते हैं, आप एक ही समय पर सही और गलत नहीं कर सकते हैं, आप मनुष्य और परमेश्वर के पीछे एक ही समय पर नहीं जा सकते हैं। नहीं श्रीमान, या तो आपको परमेश्वर का अनुकरण करना होगा या तो मनुष्य को अनुकरण करना होगा। अब उसके बाद यदि आप परमेश्वर का अनुकरण करते हैं और अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब आप उस परमेश्वर के कैदी बन जाते हैं, उस वचन के लिए, उसकी इच्छा के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि और कोई क्या कहता है, आप इसके लिए एक कैदी बन जाते हैं। सुनना, हम अंत समय पर हैं और मैं भक्ति और आदर भाव के साथ इसे कहता हूँ, अंत के कुछ मिनट निकल रहे हैं। देखो वो परमेश्वर मेरे विचार से वही करेगा और करना ही है और इस अंत दिन में करेगा। उसकी कटनी के लिए एक औजार को ढूंढ निकाले, उसे एक औजार को लेना है इस जमीन को खदेड़ने के लिए। कोई भी किसान जब वो उसकी कटनी के लिए जाता है और कटनी करने के लिए उसके पास एक औजार होता है जिससे वो यह करता है, निश्चय ही उसके पास यह करने के लिए एक धारदार हथियार होता है या कुछ तो ऐसा ही। वो किसी औजार को लेता है ताकि वह अनाज को छाटे और कटनी पक गई है। परमेश्वर हमें अपने हाथ में ले ले, हमें अपने प्रेम से बंधा हुआ दास बना, आपके इस्तेमाल करने के लिए हमें औजार बना, ताकि इस पाप से भरे हुए श्रापित धरती को एहसास दिलाएं कि जहां पर हम आज रह रहे हैं कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। मैं खुद परमेश्वर मैं एक कैदी बनूं, यदि मेरे सारे भाई लोग मुझसे मुंह मोड़ लें, यदि मेरे सारे मित्र लोग मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, मैं यीशु मसीह और उसके वचन का एक कैदी बनना चाहता हूं, जिससे कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा उसके वचन के लिए जुए में जुझ सकूं, यह देखने के लिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को प्रमाणित कर रहा है उन्हीं बातों के द्वारा जो उसने कहा कि इसे किया जाना है। मैं एक यीशु मसीह का कैदी होना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं सोचता हूं आज रात हमारे सिर झुके हुए हैं, यदि हमारी आकांक्षा जो हमारे पास है कुछ तो और बनने की है, या हो सकता है जो कुछ भी हम सोच सकते हैं जो हमारे खुद के स्वार्थ की बात हो। सोचता हूं यदि हम केवल इन सारी बातों को एक तरफ नहीं रख सकते हैं तो। मैं सोचता हूं आज रात यदि कुछ जवान लड़के यहां वहां देखकर कहते हैं मैं यह बनूंगा जब मैं बड़ा होऊंगा, मैं एक फलाना फलाना चीज को करूंगा। सोचता हूं यदि आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में बढ़ते हुए देख सकें और कहें नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मेरी आकांक्षाएं अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है। मैं अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना चाहता हूं इस अंतिम दिन पर एक कटाई का औजार बनने के लिए। कुछ जवान लड़कियां जिनके पास एक सभ्य महिला का चरित्र हो सकता है, या हो सकता है वह छोटी सुंदर पत्नी बने, या हो सकता है किसी दिन हॉलीवुड में व्यवसाय को करे। मैं सोचता हूं यदि आप अभी नहीं चाहती हैं कि आप अपनी आकांक्षा को परमेश्वर की उपस्थिति और उसके वचन को समर्पित करें, अपने खुद के जीवन के अंदर परमेश्वर की पुकार को सुने, परमेश्वर जानता है आप कौन हैं। मैं सोचता हूं यदि वहां पर एक नजदीकी सेवक होता या एक दास कलीसिया में कहीं तो एक कार्यरत होता। मैं केवल तभी तो एक बार यहां पर आता हूं। मैं नहीं जानता हूं यहां पर आज रात एक तिहाई लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं यह थोड़े से लोगों का झुंड जो यहां पर है। मैं सोचता हूं यदि उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो यह कहना चाहेगा, मैं परवाह नहीं करता कि कोई क्या कहता है, मैं अब परमेश्वर का बंधुआ हूं, मैं इसके बावजूद उसके वचन को प्रचार करूंगा, मैं परवाह नहीं करता जो भी हो, मेरी संस्था मुझे बाहर निकाल दे, मैं फिर भी उस वचन के साथ बना रहूंगा, मैं इसे करूंगा। मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा है। मैं यीशु मसीह का एक कैदी बनूंगा, उसके अनुग्रह और सहायता के द्वारा मैं इसे करूंगा। इस पर सोचें, जब हमने अपने सिरों को झुकाया हुआ है, कितने लोगों के पास आज रात वो आकांक्षा है? क्या अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे? मेरे भी हाथ उठे हुए हैं। मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ हमारे सिरों को झुकाने के साथ धीरे से। अब जैसे आप इसके ऊपर सोच रहे हैं, जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ, मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ, सब कुछ तुझे मेरे धन्य उद्धार करता, मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ। क्या आपका सचमुच ऐसा अर्थ है, मैं एक कैदी होना चाहता हूँ, मैं प्रभु मुझे ले ले, मुझे आज रात कुम्हार के घर में ले चल, मुझे पूरी तरह से तोड़ दे और मुझे पूरी तरह से फिर से आकार दे। तुझे मेरे धन्य उद्धार करता, मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। स्वर्गीय पिता, जैसे हम निरंतर इस गीत को बजा रहे हैं, मैंने सोचा इस समय पर यह सबसे फलदायक बात होगी कि मैं इस गीत के अंदर घुसकर कुछ क्षणों के लिए आपसे बात करूं। जैसे लोग सोच रहे हैं, मैं सब कुछ समर्पित करता हूं, पिता होने पाए हम ऐसा करें जैसे कि इसे करने का हमारा आखिरी मौका हो। आइए हम ईमानदारी के साथ आएं प्रभु की मेज पर, जैसे यह थी, धुले हुए वस्त्र, धुले हुए प्राण, धुली हुई इच्छाएं, धुली हुई आकांक्षाएं, ताकि खुद को समर्पित करें और परमेश्वर उसके वचन को ले ले। हमें इसके साथ जुए में जोतते हुए परमेश्वर का जो वचन है, और होने पाए पवित्र आत्मा अब हमें ले ले, जैसे हम हमारे हृदय के चारों ओर उस जुए के साथ जुतने की आवाज को सुनते हैं। आज की रात के बाद से मैं आपको आपके वचन पर लेता हूँ। अब अपने खुद के विचारों को मत सोचना, मेरे विचार को सोचना, मेरी इच्छा को सोचना, मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा। परमेश्वर प्रदान करे कि हम में से हर एक के पास एक अनुभव हो। ये जवान लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, पति और पत्नी और कुछ पति या पत्नी होने जा रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे सेवक लोग जो साथ साथ रास्ते पर हैं, और प्रभु यहाँ पर भाई नेविल हैं, मैं हूँ, सीढ़ी पर से ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब हमारे दिन गिनती में थोड़े हैं, हमें हमारे कदमों को और अधिक ध्यानपूर्वक रखना है। हम जो कदमों को रखते आए हैं उससे अधिक हम ध्यान दें कि हम कहाँ पर कदम रखते हैं, जिससे कि हम ना गिरें। शारीरिक बात को कह रहा हूँ, जैसे हम एक समय पर थे, लेकिन प्रभु जैसे हम देखते हैं कि हमारा मरणहार जीवन धुंधला होता जा रहा है और आप हमारे हाथों को नहीं थामते हैं, तो हमारा कोई भी कदम निश्चित नहीं हो सकता है। अब परमेश्वर आप हमें ले लें, क्या आप लेंगे हमारे हृदयों को, और हमारी इच्छाओं को अपने हाथ में ले लीजिए और आज रात वचन के लिए मसीह के लिए हम एक कैदी बने। होने पाए ये स्त्रियाँ और ये नौजवान स्त्रियाँ और ये नौजवान पुरुष, लड़के और लड़कियाँ उनके जीवन को समर्पित करें प्रभु, और होने पाए उनकी आकांक्षा यीशु मसीह की सेवा करने की आकांक्षा बन जाए और हम उसके दैविक अनुग्रह और उसके इच्छा के कैदी बने, इसे प्रदान करें प्रभु। यही वो सब है जिसे मैं करने के लिए जानता हूँ प्रभु। ये कुछ टूटे फूटे शब्द हैं और मैं भरोसा करता हूँ कि आप इन्हें सही रीति से जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है और लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही गर्म है और बहुत से लोगों को घर जाना है और जल्दी काम पर जाना है, लेकिन होने पाए केवल वे बीज उनके हृदय के अंदर बने रहे। एक कैदी घर जाकर और अपनी पत्नी से कहे, जैसे वे आगे से वे तैयार हो जाएं कि जाकर और प्रार्थना करें, आज की दोपहर, आज की शाम सोते समय, और एक दूसरे को देखते हुए कहें, प्रिय आज रात के बारे में क्या है, क्या सचमुच हम मसीह के और उसकी इच्छा के एक कैदी बनना चाहते हैं या हम अपनी खुद की इच्छा के द्वारा कार्य करना चाहते हैं। होने पाए वे जवान पुरुष और जवान महिलाएं जो हर कहीं पर हैं, विशेष करके जिन्होंने आज रात संदेश को सुना है, अपने आप से उसी सवाल को पूछे, क्या मैं सचमुच एक कैदी बनना चाहता हूँ अपने खुद के जीवन को त्यागते हुए। वह जो उसके जीवन को बचाता है वह उसे खोएगा, लेकिन जो उसके जीवन को मेरे कारण खोता है वह उसे पाएगा। पिता हम जानते हैं ऐसा ही है, आपका एक कैदी बनने के लिए अपनी खुद की आकांक्षाओं को, अपनी खुद की इच्छाओं को खोना होगा ताकि आपकी इच्छाओं को जाने, तब हमारे पास अनंत जीवन होगा, इसे प्रदान करें प्रभु। केवल एक ही चीज मैं जानता हूँ कि अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करना है और होने पाए यह फलों से भरा हुआ जीवन बने और महान औजारों को अंतिम दिनों की कटनी के लिए लेकर आए। स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियाँ पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा को समर्पित कर दें और यीशु मसीह के उसके प्रेम के लिए कैदी बने, मसीह के दैविक प्रेम के जंजीरों में जकड़ जाएं। हम इसे उसके नाम से मांगते हैं। मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ, आइए खड़े हो जाएं। मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ, सब कुछ तुझको मेरे, आइए फिर से कहेंगे अपनी आंखों को बंद करते हुए और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए। मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ, मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ, सब कुछ तुझे मेरे धन्य उद्धार करता, मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। अब यदि हम अपने सिर को झुकाते हैं और इससे पहले समाप्ति के गीत को गाएंगे, अपने साथ यीशु का नाम लेकर जाएं। मैं इस भाई से यहाँ पर कहता हूँ, मैं उसका नाम भूल गया, वो बहन जिसने अपने ऊपर आते हुए एक अंधकार के दर्शन के बारे में बताया था, जिसने चंगाई पाई थी, और याद होगा वो पीछे की ओर देख रही थी, वह पर्दा हट गया था, उसके विश्वास ने ऐसा किया। आप सभा को प्रार्थना से समाप्त करें, क्या आप करेंगे भाई, और परमेश्वर से हम पर आशीषों के लिए मांगें।